Broken Cisterns. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Saturday morning, January 23, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International breakfast at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Shikasta Hos. Ye pegam Brother William Marion Branham ki janib se hafte ki sub 23 January 1965 Full Gospel Businessman Fellowship International Breakfast Ramada in Phoenix, Arizona, USA में दिया गया. खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ. खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ. सब कुछ मुमकिन है. खुदावंत मैं ईमान रखता हूँ. आइए अब हम एक लम्हे के लिए खड़े रहते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं.
लॉर्ड जीसस, वी आर ट्राइंग इन आवर हम्बल वे टू एक्सप्रेस टू यू बाय सिंगिंग दिस दैट वी बिलीव.
खुदावंत यीशु, हम बड़ी आजिजी से ये गीत गाकर कोशिश कर रहे हैं कि तुझ से इजहार करें कि हम ईमान रखते हैं.
And we pray, Lord, that now that you will continue breaking the bread of life to us, giving to us that which we have need of out of thy word. For we ask it in Jesus' name. Amen.
और खुदावंत, हम दुआ करते हैं कि तू अब और हमेशा ये जिंदगी की रोटी जो कि हमारी जरूरत है अपने कलाम से देता रहेगा. हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. आप तशरीफ रखें.
I am quite sure if we should God say the all sufficient word now of amen that the all blessings of God still rest upon this audience.
मैं काफी पुरयकीन हूँ और अगर हम पुरयकीन होना चाहते हैं तो मैं अब ये बड़ा ही अच्छा लफ्ज कहूंगा. आमीन. ये खुदा की अजीम आलीशान बरकत को जमात पर हमेशा कायम रखता है.
I've sat this morning and listened close to the service, enjoyed the testimonies, the different ways each one has of expressing themselves.
मैंने आज सुबह बैठे हुए इस इबादत को बड़े ही ध्यान से सुना और गवाहियों से लुत्फंदोज हुआ. हर एक मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप का इजहार कर रहा था.
And to hear the newcomers, the Baptist brother here that come to apologize for thinking that a little wrong.
और मैंने नए आने वालों को भी सुना. बैप्टिस्ट भाई आया और अपने किसी गलत ख्याल के लिए माजरत कर रहा था.
So I certainly appreciate the human. Somebody that can be human enough or gentleman enough to, if he thinks he's made a mistake.
मैं ऐसे इंसान की हौसला अफजाई करता हूँ. कोई भी माकूल इंसान या शरीफ ज़्यादा ऐसा ही करता है, अगरचे उसने सोचा था कि उससे गलती हुई है.
He didn't exactly apologize to me. It was me who was apologized to. It was God. So I appreciate that. See, God bless our brother and his evangelist brother.
तो वो दरअसल मुझसे माजरत नहीं कर रहा था क्योंकि वो मैं नहीं था जिससे उसने माफी मांगी, बल्कि वो खुदा था. बस देखें, मैं इस बात पर उसकी हौसला अफजाई करता हूँ. खुदा हमारे भाई और उसके मुबशर भाई को बरकत दे. जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी एक बैप्टिस्ट था और मैं खुद भी बैप्टिस्ट चर्च से ताल्लुक रखता था. मैं मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च का एक रुकन था.
When I come among the people, I know how you feel. I felt the same way, just full of something, and I didn't know.
और जब मैं लोगों के दरमियान आता हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं. मैंने भी इसी तरीके से महसूस किया था, जैसे कि किसी चीज से भरा हुआ हूँ, जैसे कि मैं जानता भी नहीं था.
I remember my first experience of sin. So it was in Dwajak, Michigan. I beg your pardon. I've been at Dwajak on a fishing trip. And was coming down from Dwajak to, down into Indiana.
मुझे याद है जब मैंने पहली दफा पेंटिकॉस्टल लोगों को देखा। ये तजर्बा मुझे डाओ जैक मिशिगन में हुआ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बल्कि डाओ जैक में मछली का शिकार करने के लिए गया हुआ था और डाओ जैक से वापस इंडियाना की तरफ आ रहा था।
एंड सो आई सीन द नेम्स ऑफ जीसस ऑल ओवर द कार्स एंड थिंग्स एंड आई लिसन टू देयर सर्विसेज दैट डे।
और मैंने बहुत सारी कारों और ऐसी दूसरी चीजों पर यीशु नाम लिखा हुआ देखा था और मैंने उस दिन उनकी इबादत को सुना।
And the next day, they asked me to come to the platforms to say a few words, and I did. They asked me what church I belonged to, and I told them I was a Baptist.
और अगले रोज उन्होंने मुझसे प्लेटफॉर्म पर आने और कुछ बातें कहने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। और मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका ताल्लुक किस चर्च से है और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक बैप्टिस्ट हूँ।
And that night, they had an old colored man was going to preach, and he must have been in his late 80s. And he come out the platform, the old fellow, they almost had to lead him out.
और उस रात उनके पास एक स्याफाम भाई था जो मुनादी कर रहा था और उसकी उम्र 80 साल से ऊपर थी और वो प्लेटफॉर्म पर मुनादी करने के लिए आया और वो बूढ़ा साथी तकरीबन उनकी क्यादत के लिए था।
He was long ministerial coats on, a velvet collar, and just a little rim of white fur hair around the side.
वो मुनादों वाले लंबे कोट में मलबूस था, जिसका वेलवेट का कॉलर था, जिसके चारों अतराफ सफेद रंग की बालों जैसी डोरी बंधी हुई थी।
I thought all these men here, theologians, great man, how that let this service be given to a fellow like that? Well, the old man.
और मैंने दिल में सोचा, यहाँ तो सारे आलमे दीन और अजीम आदमी मौजूद हैं, तो फिर उन्होंने इस जैसे शख्स को मौका क्यों दिया? बेहतर तो ये था कि ऐसा ज़हीफ आदमी पीछे कुर्सी पर बैठता।
They've been preaching that day about what Jesus did here on earth, but he took his text, I believe, from Job 7:27. I wouldn't be sure that's a scripture.
दूसरे खादम उस दिन बता रहे थे कि यीशु ने जमीन पर होते हुए क्या क्या किया, और मेरा अंदाजा है कि उस बूढ़े साथी ने अपना मतन अय्यूब की किताब 7:20 से लिया, और हो सकता है मैं ये हवाला दुरुस्त ना बता रहा हूँ।
However, this is the quotation or some part of it. Where were you when I laid the foundations of the world? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy.
तो भी ये उस हवाले का एक हिस्सा है कि तू उस वक्त कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। और उस बूढ़े ने इस बात को बताया कि आसमान पर क्या हो रहा था, जबकि बाकी सारे खादम ये बता रहे थे कि जमीन पर क्या हुआ था। और अभी तकरीबन उस बूढ़े साथी को मुनादी करते हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि खुदावंद के रूह ने उसे छुआ और उसने फर्श पर ऊपर की जानिब छलांग लगाई और अपनी एड़ियां आपस में रगड़ी।
My, there was much room is almost half on this platform. You might walk and all. That you just haven't got enough room up here for me to preach.
मेरे खुदाया, हालांकि उसे इससे ज्यादा वक्त मिला था जितना कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मिला है, और उसने वापस जाते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए पूरा वक्त नहीं दिया।
Well, I was about 20 years old then. I thought, if that'll do that for that old man, what would it do for me?
खैर, उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 वर्ष थी और मैंने दिल में सोचा, अगर ये चीज इस बूढ़े आदमी को इस तरह इस्तेमाल कर सकती है तो अगर मुझ पर आ जाए तो क्या करेगी? बस गौर करें।
The habit of keeping everything just as orderly for our new brothers that we certainly are welcoming into our fellowship.
सारी बातों की तरतीब को मद्देनजर रखते हुए हम अपने नए आने वाले भाइयों को अपनी रफाकत में यकीनन खुश आमदीद कहते हैं।
See, I believe they made mention of a priest sitting here, I think. Of course, being Irish, my people are Catholic. And so there was a couple more, Baptists and different ones.
मैं गौर करता हूँ और मुझे यकीन है कि उन्होंने निशानदेही की है कि यहाँ एक प्रीस्ट भी बैठा हुआ है। मैं सोचता हूँ बिलाशुबा आयरिश होते हुए मेरे घर वाले कैथोलिक थे और इसी तरह वहाँ बैप्टिस्ट और दूसरे मजीद मुख्तलिफ लोग भी मौजूद थे।
You might have been a little confused a while ago. I noticed another brother spoke about it, but
शायद आप लोग थोड़ा अरसा पहले कुछ परेशान हो गए हों, और मैंने गौर किया कि उन भाइयों में से किसी ने इस पर बात नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूं कि इस बात को वाजे करूं। जब भाई शकेरियन बेहतरीन मुनादी करने के बाद शादमानी से लबरेज हो गए थे, और इस बात को जानते हुए कि खुदावंद की आमद करीब है, तो उसने बेगाना जुबान में हमसे ये बातें बयान की, और हमारे पास तर्जमान हैं जो तफसीर बता सकते हैं।
Which scripture says, if there be no interpreter, then let them hold their peace. But if they speak in tongues and then interpret it, it becomes prophecy.
जैसा कि कलामे मुकद्दस में लिखा है, और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो, तो बेगाना जुबान बोलने वाला चुपका रहे। लेकिन अगर वो बेगाना जुबान में बोलते हैं, और फिर इसका तर्जमा होता है, तो फिर ये नबुवत हो जाती है।
So the little confusion of two of them at one time. Now that wasn't a bit confusing, see, because one of them was given the interpretation, and the other was prophesying.
बस इन दोनों के दरमियान एक ही वक्त में थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। अब वहाँ थोड़ी सी भी गलतफहमी ना थी, गौर करें, क्योंकि उनमें से एक नबुवत कर रहा था जबकि दूसरा शख्स उसका तर्जमा कर रहा था।
See, so that's I thought I would let our brethren understand if they did not understand, because one of them is correctly given to notice the time limits of each one. And the other one is so filled himself that the Spirit of God was prophesying through one, interpreting the other, was given the interpretation.
समझे? बस जैसा कि अगर आप लोगों ने इस बात को पहले नहीं समझा, तो मैंने सोचा कि मुझे बताना चाहिए ताकि हमारे भाई इसे समझ लें, क्योंकि उनमें से ठीक एक शख्स तर्जमा कर रहा था। क्या आपने हर एक के मुकर्रर वक्त पर ध्यान दिया था? बल्कि खुदा का रूह एक के जरिए नबुवत कर रहा था, तो दूसरा शख्स खुद ब खुद भर जाता था जबकि एक बोल रहा था और दूसरा उसका तर्जमा कर रहा था।
So it might be clear that you were not sometimes to the natural mind, it's like our precious brother that gave the apology this morning. It is a bit confusing to the person who doesn't understand.
बस ताकि ये आपके लिए वाजे हो सके, बाज़ोकात हम जिस्मानी ज़हन रखते हुए ऐसा नहीं करते। जैसे आज सुबह हमारा प्यारा भाई माजरत कर रहा था, ये उस शख्स के लिए थोड़ा हैरान कुन है जो इसको नहीं समझता।
But to those who are in veterans of the battle that we're in, why we understand that what these things are. So I just thought I'd say something about it, if it was all right.
लेकिन वो लोग जो मैदान में हैं, और जैसा कि हम जंग के तजर्बाकार सिपाही हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं। अगरचे ये सब ठीक था, तो भी मैंने सोचा कि मैं इन चीजों के मुतालिक कुछ बताऊंगा।
Now, no, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know, that fellow said, the old colored man said, you don't have enough room for me to preach. You ain't got enough time for me to preach.
अब मुझे इल्म है कि ये बातें इस घड़ी नहीं कही जा सकती, लेकिन इसी तरह हर कोई थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहा। मैं और आप भी जानते हैं, उस बूढ़े साथी स्याफाम आदमी ने कहा था, आपने मुझे बोलने के लिए काफी वक्त नहीं दिया, तो आपने भी मुझे मुनादी के लिए काफी वक्त नहीं दिया, इसकी बजाय ज्यादा दिया है।
He'd been a pastor at the church for 20 years, and he always preached just exactly 30 minutes each Sunday morning at his church. And he said, this Sunday morning he preached 3 hours.
किसी ने एक दिन बताया था, एक खादम था जो तकरीबन 20 साल से कलीसिया की निगेबानी कर रहा था, और वो हमेशा अपने चर्च में हर इतवार की सुबह 30 मिनट कलाम सुनाता था। लेकिन उस शख्स ने कहा, इस इतवार की सुबह उसने 3 घंटे कलाम सुनाया।
And so the deacon board called him in and said, Pastor, we really appreciate you that we always know that you stand for the Bible and its rights.
बस انتظامیہ بورڈ نے اسے اندر بلوایا اور کہا، پاسٹر صاحب، ہم حقیقت میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ آپ بائبل کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ درست بات ہے۔
And we really appreciate you, and we believe you're God's servant. And we certainly did appreciate that message this morning.
اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری درستگی کی ہے، جیسے کہ ہم خدا کے سامنے پاکیزگی اور خالص پن کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے خادم ہیں، اور یقیناً ہم آج آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
But sir, there's just one thing that we want to ask you about, that we've timed you as a deacon board, that every Sunday morning is just exactly 30 minutes, and today you were 3 hours.
لیکن انہوں نے کہا، لیکن ایک بات ہے جس کے متعلق ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظامیہ بورڈ ہوتے ہوئے آپ کو مقررہ وقت دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہر اتوار کو آپ ٹھیک 30 منٹ کلام سناتے تھے، لیکن آج آپ نے 3 گھنٹے پیغام دیا۔
So now remember, we appreciate every bit of it. It was all right making the old fellow feel good, you know.
کہنے لگے، اب یاد رکھیں، ہم آپ کے پیغام کی ہر بات کو سراہتے ہیں۔ پیغام بالکل درست تھا، آپ جانتے ہیں، جیسے اس بوڑھے ساتھی کو اچھا لگا۔
He said, well, brother, and I tell you what it is, that every morning when I go to, I'm called to the pulpit, that I put one of those little lifesavers in my mouth. He said, I just suck on it and said, when the lifesaver's done, said, it takes just 30 minutes. And so then I quit preaching.
اس خادم نے کہا، ٹھیک ہے بھائیو، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں کر ہوا ہے۔ اس نے کہا، ہر اتوار جب میں پیغام دینے جاتا اور مجھے پلیٹ فارم پر بلایا جاتا تھا، اس نے کہا، تو میں اپنے منہ میں ٹافیوں میں سے ایک چھوٹی لائف سیور ٹافی رکھ لیتا تھا، اور اس نے کہا، میں فوراً اس ٹافی کو چوسنا شروع کر دیتا تھا، اور پھر کہا، اور جب لائف سیور ٹافی ختم ہو جاتی تھی تو کہنے لگا، اسے چوسنے میں صرف 30 منٹ لگتے تھے، تو کہا، تب میں فوراً منادی بند کر دیتا تھا۔
He said, you know, this morning I thought I was a little over time. I spit it out, I had a button in my mouth.
اور وہ کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے، آج صبح میں نے سوچا کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، تو بالآخر میں نے اس کو تھوکا تو یہ ایک بٹن تھا جو میرے منہ میں تھا۔
I ain't gonna put anything in. I hope I don't get some buttons.
میں ایسی کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں رکھنے جا رہا، اور پس ہم امید کرتے ہیں کہ نہ ہی اپنی جیبوں میں بٹن رکھیں گے۔
But we are, I hope that didn't sound sacrilegious here, but just, you know, even God has a sense of humor, you know.
بلکہ ہم، میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کوئی بے ادبی والی بات نہیں، لیکن میں صرف، آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ خدا میں بھی ذوق ہے اور آپ اس بات سے واقف ہیں۔
So we are very thankful to be here and have this time of fellowship and with this grand privilege to break the bread of life once again in my own simple little way.
ہم اس رفاقت میں آ کر بڑے ہی شکر گزار ہیں، اور اس بڑی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم زندگی کی روٹی توڑ رہے ہیں، جسے میں اپنے ادنا اور سادہ طریقے سے پیش کرتا ہوں۔
I know it's theologians, as that man spoke here last night from England. My, he'd get up behind a person like that with my 7th grade education.
اور مجھے علم ہے، جیسا کہ گزری رات یہاں انگلینڈ سے آئے ہوئے ایک علم الہیات کے ماہر شخص نے کلام پیش کیا تھا، اس نے مجھ جیسے شخص کے پیچھے کھڑے ہونے میں توہین سمجھی کہ جس کی تعلیم صرف 7th درجے تک ہو۔
But I hope that God will interpret to you the meaning in my heart. See, my words are not right, my intentions I trust are.
لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو میرے دل میں ہے خدا اس کا مطلب آپ سے بیان کرے گا، سمجھے؟ اگرچہ میرے الفاظ درست نہیں، لیکن میرا مقصد، مجھے بھروسہ ہے، وہ درست ہے۔
Now, let us read in the scripture. Many of you like to follow, and I'm going to read this morning for just a few moments from the book of Jeremiah the prophet, the 2nd chapter, and I'm going to begin now with the first verse.
آئیے اب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور میں آج صبح کچھ لمحوں کے لیے یرمیا نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں.
Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth and the love of thine espouse, when thou wentest after me in the wilderness and in the land that was not sown.
پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں, کہ تو بیابان میں یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی.
Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall and offend, evil shall come upon them, saith the Lord.
اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا. خداوند یوں فرماتا ہے, اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے, ان پر آفت آئے گی.
Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel.
اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں, سب خداوند کا کلام سنو.
Thus saith the Lord, What iniquity have your fathers found in me, that they have gone far from me and walked after vanity and are become vain?
خداوند فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے.
Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt and led us through the wilderness, through the land of desert and of pits, through the land of drought and of the shadows of death, through the land that no man passed through and no man dwelleth.
اور انہوں نے یہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا اور بیابان اور بنجر اور گڑوں کی زمین میں سے, خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے, جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور بود و باش کرتا تھا, اور ہم کو لے آیا.
And I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when you entered, you defile my land and made my heritage an abomination.
اور میں تم کو باغوں والی سرزمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اچھے پھل کھاؤ, لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا.
And the priest said not, Where is the Lord? And the hand of the law knew me not.
کاہنوں نے کہا کہ خداوند کہاں ہے, اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا.
And the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit.
اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی, اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی, اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں.
Therefore I will plead with you, saith the Lord, and with your children will I plead.
اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تم سے جھگڑا کروں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا.
For over this land of Chedom and see and in the Kedur and consider diligently that and see if there be such a thing.
کیونکہ پار گزر کر قتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے.
Has a nation changed their gods which are no gods? But my people have changed their glory for that which does not profit.
کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو, حالانکہ وہ خدا نہیں, بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیزوں سے بدلا.
Be astonished, O you heavens, at this, and be horribly afraid. You're desolate, saith the Lord.
خداوند یوں فرماتا ہے, اے آسمانوں, اس سے حیران ہو اور شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ.
For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water.
کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی, انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے, شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا.
May the Lord add his blessings to the reading of his words. And I would like to take a text of that, broken cisterns.
खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत नाजिल फरमाए और मैं इसमें से ये उन्वान लेना पसंद करूंगा, शिकस्ता हाउस।
In reading this scripture this morning, which all scripture is given by inspiration, and we come to the house of the Lord for correction and for understanding.
जब मैं आज सुबह इस हवाला को पढ़ रहा था, जैसा कि सारे का सारा कलाम इल्हाम से दिया गया है, और इसीलिए हम अपनी दुरुस्तगी और समझ के लिए खुदावंत के घर में आते हैं।
And sometimes that we see the any little thing in the way, like this military man a while ago was speaking to us and saying that some certain thing that perhaps maybe in some other country has a certain missile or something on that idea, and we've got to find something to counteract that and military strategy.
और बाज़ औक़ात हम किसी भी छोटी सी बात को किसी भी तरीके से देखते हैं, जैसे कि उस फौजी आदमी की तरह। थोड़ा ही अरसा हुआ कि वो हमें किसी खास चीज के मुतालिक बता रहा था, जो कि शायद दूसरे मुल्क का एक खास मिसाइल था या फिर कुछ इसी तरह का कोई नजरिया बता रहा था। हम फौजी मनसूबा बंदी में इसकी रोकथाम के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर चुके हैं।
Well, the same thing goes into a church, to a parish where a man is preaching, or if he's an evangelist in the field.
ठीक यही चीज एक चर्च में होती है। एक इलाका में एक आदमी मुनादी कर रहा होता है, या अगर वो एक खेत में एक मुबशर होता है।
When he sees uprisings and something that's just starting, though in its infancy or whatever it is, it's that man, if he's a servant of God, to blot that thing so far from the people's minds that they'll keep away from it. And we don't want that to happen.
और जब वो देखता है कि ऐसी चीजें उठ रही हैं और बचकाना बातें या जो कुछ भी शुरू हो रहा है, वो आदमी अगर वो खुदा का एक खादम है तो वो इन चीजों को लोगों के जेन से दूर रखने की रोकथाम करेगा, ताकि वो इससे दूर रहें। और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कि हम ऐसे हालात से दो चार हों।
Now, during the time of Jeremiah here, his prophecy, it had been about 60 years since the death of Isaiah. Isaiah, and there had been about 60 years without a major prophet.
अब यहाँ भी जब यर्मिया ने नबुवत की, जबकि यिशायाह नबी की वफात को 60 बरस हो चुके थे, और वो 60 बरस तक एक बड़े नबी के बगैर रहे थे।
There was a beckon, some of the small minor prophets, but Isaiah was the last major prophet.
हालांकि उनके पास हबकूक और दूसरे छोटे नबी मौजूद थे, लेकिन यिशायाह उनके पास आखिरी बड़ा नबी था।
And the people had during this time had no one to call them out. They had drifted, yet they were God's people, had drifted into this state now that we find them in as Jeremiah came to prophesy to them.
और उस वक्त उन लोगों में से किसी को बुलाया नहीं गया था, और वो लोग उसी बहाव में चले जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुदा के लोग थे। वो अब इस हालत में आ चुके थे जिसमें हम उन्हें पाते हैं, और फिर यर्मिया उन लोगों के दरमियान नबुवत करने आया।
And Jeremiah also was he prophesied before the exile, and also he went into exile with them.
और इसी तरह यर्मिया ने असीरी से पहले नबुवत की, और फिर वो भी लोगों के साथ असीर होकर चला गया।
And then, of course, Daniel come on after Jeremiah. And Daniel said that he had understandings by the scripture of the 70 years that they were to be there.
और फिर बिला शुबा यर्मिया के बाद दानियल आया, और दानियल ने कहा कि उसे कलाम के मुताबिक 70 बरसों के मुतल्लक समझ दी गई है, जो कि रुनमा होने को थे।
Of course, there was another prophet among them that wanted to make this yoke as he put it up on his neck. That it would be a small thing, that within 2 years, well, God was going to bring them all back. But Jeremiah no different from that.
बेशक उन लोगों के दरमियान एक और नबी था, और उसने जुआ बनाया और उसे अपनी गर्दन पर रखा और कहा कि तुम लोग थोड़ी देर ही असीरी में रहोगे, क्योंकि खुदा तुम लोगों को ठीक 2 साल में ही वापिस ले आएगा। लेकिन यर्मिया इस बात को उससे मुख्तलिफ जानता था।
And we know what happened to the prophet who prophesied wrongly. He died that same year. So God wouldn't let him stand.
और हम इस बात से वाकिफ हैं, जिस नबी ने गलत नबुवत की उसके साथ क्या हुआ, वो नबी उसी साल हलाक हो गया, सो खुदा ने उसे खड़ा ना होने दिया।
And now we also notice the conditions of the people in that day.
और अब हम उस जमाने के लोगों की हालत पर निगाह करते हैं।
Now, I do not wish you to misunderstand me. I am not aiming what I aim to say here, some scriptures and little notes.
अब मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि आप मुझे गलत समझ लें। मेरा ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद कुछ नविश्तों और जरूरी बातों को यहाँ बयान करना है।
Used to be I didn't have to write my scriptures and things down, but after I passed 25 the second time, well, I don't remember like I used to. So I write down a scripture and kind of know from that where I'm going.
जो बातें मैं कहता हूँ उन बातों को और कलाम को अक्सर अकात मुझे लिखना नहीं पड़ता था। ये दुरुस्त है कि मैं 2 दफा 25 पूरे कर चुका हूँ। मैं उस तरीके से याद नहीं रख सकता, लिहाजा मैं एक हवाला लिख लेता हूँ जिसके मुतालिक जानता हूँ कि ये कहाँ से है और मैं किधर जा रहा हूँ।
So much time praying for the sick and so forth and out and gone. I don't have time to really study like I should do.
और फिर बीमारों के लिए दुआ करने के लिए काफी वक्त मिल जाता है और मजीद इसी तरह फिर आगे पीछे जाना पड़ता है। मेरे पास मुतालिया के लिए इतना वक्त नहीं होता जितना के होना चाहिए।
Now, but this great prophet of this day was Jeremiah, and he was something on the order of Amos and many of the other prophets that rose up. He was stirred when he seen the conditions of the nation.
अब यर्मिया उस जमाने का जिम नबी था और वो आमोस और बाकी दूसरे अंबिया के लिए जो उठ खड़े हुए थे बाकायदा एक नमूना था। जब उसने कौम की हालत पर निगाह की तो उसके अंदर जुम्बश हुई।
Now there were places sometime when you're speaking about a nation, it might think it's reflecting to a certain group. It's not that, it's the overall picture of the nation.
अब जैसा कि वहाँ बाज़ोकात जब हम एक कौम के मुतल्लिक बात कर रहे होते हैं तो ऐसा सोचते हैं जैसे किसी एक खास ग्रोह को जाहिर किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है बल्कि ये उस पूरी कौम की तस्वीर कशी होती है।
And we find today a very comparative condition today as it was in the days of Jeremiah. That the nation itself altogether has gone into more or less idolatry, I'd say, got away from God.
और आज भी हम ऐसा ही पाते हैं, एक बहुत ही बाहम निस्बत रखने वाली हालत आज भी है, जैसे कि ये यर्मिया के दिनों में थी, जैसा कि कौम खुद पूरी की पूरी तकरीबन बुत परस्ती में दाखिल हो चुकी थी। मैं कहूँगा ये ऐसी किस्म है जो कि खुदा से दूर होना है।
And by doing that, it's been the weakness of the pulpit. Because if the pulpit would have stayed straight and with the word of God, God would be in every church like he is moving among us here.
और इसी काम की वजह से मजबा कमजोर पड़ गया था, क्योंकि अगर मजबा ब्राय रास्त खुदा के कलाम के मुताबिक होगा तो खुदा हर कलीसिया में मौजूद होगा, बिल्कुल जैसे वो हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है।
But they have led away from that, and that's the thing that I want to talk about this morning. And now we find that that's absolutely true in every age.
लेकिन वो खुदा की रहनुमाई से दूर हो गए, और यही वो बात है जिसके मुतालिक आज सुबह मैं बात करना चाहता हूँ। और अब हम इस बात से वाकिफ हैं कि ये बात हर जमाने में मुतलिक तौर पर सच रही है।
I believe it was Amos, as I referred to him a while ago, that he said he was not a prophet, he was the son of a prophet, but said that when the lion roars, who can be fear?
कुछ ही अरसा हुआ है कि मैंने इसका हवाला दिया था और मुझे यकीन है कि यह आमोस था, यहाँ तक कि उसने कहा था कि वो नबी नहीं और ना ही एक नबी का बेटा है, लेकिन तो भी उसने कहा कि जब शेर बब्बर गरजता है तो कौन है जो ना डरेगा।
And if anyone ever heard a real lion roar in the wilderness, these you hear in the cages around here are just meowing. But when one roars in the wilderness, everything takes heed.
किसी ने कभी जंगल में हकीकत में बब्बर शेर को गरजते सुना है? या फिर आप लोगों ने यहाँ पिंजरों में बिल्ली की तरह म्यों म्यों करते सुना है, लेकिन जब जंगल में बब्बर शेर गरजता है तो हर एक चीज मुतवज्जो होती है। मैं जंगल में उनका शिकार करते हुए लेट गया था और वो जानवरों का बादशाह है, और जब ये शेर बब्बर गरजता है तो हर एक जानवर, हत्ता के बंवरे भी खामोश हो जाते हैं। जबकि गीदड़ और लगड़ बगड़ चीखते हैं, जबकि बड़े और छोटे बंदर और दूसरे जानवर भी ची ची करते हैं, आप खुद सोचें कि आप बंवरे को मुश्किल से सुन सकते हैं, लेकिन उस सिमत जहां बब्बर शेर गरजता है वहां हर एक बंवरा भी खामोश हो जाएगा।
See, everything's afraid of him, yet there's many things can kill him. But he's recognized as a king amongst the beasts.
देखें, हर एक चीज शेर बब्बर से खौफजदा है। ताहाल, बहुत सारी चीजें हैं जो शेर बब्बर को हलाक कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो जानवरों में एक बादशाह की हैसियत से पहचाना जाता है।
He said, when a lion roars, who can but fear? He said, then God has spoken, who can but prophesy?
इसी तरह आमोस ने कहा, जब शेर बब्बर गरजता है तो कौन है जो ना डरेगा। उसने कहा, तो फिर जब खुदा फरमाता है तो कौन है जो नबुवत ना करेगा।
That's, I think, the condition meets that challenge again today. God has spoken, see? And we see the handwriting on the wall. So it's very easy to prophesy and see that we're at the end time.
और यही बात है जो मैं सोचता हूँ कि हमारी हालत आज हमें फिर उसी तरह के चैलेंज से दो चार करती है। खुदा फरमा चुका है, समझे, और हम दीवार पर तहरीर देखते हैं। बस इस तरह नबुवत करना बड़ा ही आसान है, और हम देखते हैं कि हम आखिरी जमाना में हैं।
And we're seeing God from every section of denominations, all the way from Catholicism through all the Protestant churches, Buddhas and what more from India and whatever more, he's calling his people together, assembling them together.
और हम देख रहे हैं कि खुदा तंजीमों के हर एक हिस्सा से और तमाम कैथोलिकिज्म से और तमाम प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं से, बुद्धिस्ट और ऐसे और लोगों में से जो कि इंडिया से हैं या जो कोई भी मजीद हैं, खुदा अपने लोगों को बुला रहा है और उन्हें इकट्ठा कर रहा है।
And I'm very happy for that, to see this day coming. Now, it's a great day, one of the greatest privileges.
और मैं उस दिन को आते देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ। अब जैसा कि ये बड़े ही खास दिनों में से एक अजीम दिन है। जैसा कि अगर मुझे इस बात का पता होता कि एक दुनिया थी जबकि हम रूह होते हुए खुदा का एक हिस्सा थे, जो कि हम हैं, क्योंकि हम बनाए आलम से पेशतर उसके साथ थे, क्योंकि एक ही ऐसी हस्ती है जिसकी तरफ से अब्दी जिंदगी है और वो खुदा है और हम उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा कुछ ना थे जो कि हम जानते और सोच सकते, और ऐसा होते हुए बनाए आलम से पेशतर हम उसकी सोच में थे कि हम क्या थे।
Because we are a part of him, like my son is part of me and I'm part of my father and so forth. We are sons and daughters of God by his foreknowledge.
क्योंकि हम उसका एक हिस्सा हैं, जैसे कि मेरा बेटा मेरा हिस्सा है, और इसी तरह मैं अपने बाप का हिस्सा हूँ। वो हमें पहले ही से जानता था, जिसके जरिए से हम उसके बेटे और बेटियाँ हैं।
And back there, if I could have known as I know now and could looked over the whole span of time and he had said to me, What time do you want to live?
अगर मैं वहाँ पीछे होता और मुझे मालूम होता जैसा कि अब मालूम है, और वक्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखता और वो मुझसे पूछता, तुझे जिंदगी गुजारने के लिए कौन सा वक्त चाहिए?
I'd say this time, right now, just the eve of the ending up of world history and the oncoming of the kingdom of God to be established in the earth. I think it's the most glorious time of all ages is right now.
تو میں کہتا موجودہ زمانہ ماقبل دنیا کی تاریخ کا اختتام ہو رہا ہو اور خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہونے کے لیے آ رہی ہو تو میں سوچتا ہوں کہ اب ٹھیک یہی زمانہ تمام زمانوں سے زیادہ جلالی ہے.
We find out here that Israel is accused by the prophet when God had ordained him and sent him out. They were accused of two major sins.
اب ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کو نبی کے ذریعے ملامت کی گئی جب خدا نے یرمیا کو مخصوص کیا اور اسے ان لوگوں میں بھیجا تو وہ لوگ دو بڑے گناہوں میں قصوروار ٹھہرائے گئے تھے.
And we want to talk on those two things that they had done, and from that we want to prosper by it.
اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی دو کاموں پر گفتگو کریں جو ان لوگوں نے کیے تھے اور اسی بات سے ہم اسے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں.
They had turned from God, the fountain of living water, and had hewed themselves out cisterns.
اب وہ لوگ خدا سے دور ہو گئے تھے جو کہ آب حیات کا چشمہ تھا اور انہوں نے خود حوض کھود لیے.
They had turned from the thing that God had given them and had hewed themselves something that they had did themselves.
وہ اس چیز سے دور ہو گئے جو خدا نے انہیں دے رکھی تھی اور انہوں نے اپنے لیے کچھ دوسری چیزیں کھود لی جو کہ انہوں نے بنائی.
And these cisterns, you notice, they had broken and they were leaking. Now, a broken cistern cannot hold water, it'll leak out.
آپنے دھیان دیا؟ یہ حوض جو کہ انہوں نے کھودے وہ شکستہ تھے اور ٹپک رہے تھے. اب ایک شکستہ حوض پانی کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا، یہ باہر نکل جائے گا.
I was raised on a farm and I know what an old cistern is and the difficulty we have with it.
میری پرورش اسی طرح کی جگہ پر ہوئی تھی اور میں جانتا ہوں کہ ایک پرانا حوض کیسا ہوتا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کتنی مشکلات اٹھانی پڑتی تھی.
And this leaking cistern is a very fine picture, I think, of this day, that when our everything that we have tried to do to get man together, get people together, get churches together, it has become always in the realm of intellectual trying.
اور یہ ٹپکتا ہوا حوض ایک بہترین تصویر کشی کرتا ہے اور میں اس دن کے متعلق سوچتا ہوں جبکہ ہماری ہر چیز اور ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ آدمیوں اور تمام لوگوں اور تمام کلیسیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ذہنی تعلیم سے ہمیشہ دائرہ اثر بننے کی کوشش کرتے ہیں.
We've tried to make all the Methodists become Baptists and vice versa and the different denominations, and that was not God's program to begin with.
اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام میتھوڈسٹ بیپٹسٹ بن جائیں اور اسی طرح بیپٹسٹ میتھوڈسٹ بن جائیں اور ہر حال میں مختلف تنظیمیں بن جائیں، لیکن خدا کا آغاز ہی سے ایسا پروگرام نہ تھا.
God only has one meeting place. He said over there in the book of Exodus that I have chosen the place to put my name, and that's the only place that I'll meet people.
خدا سے ملاقات کی ایک جگہ ہے اور اس نے خروج کی کتاب میں کہا کہ میں نے اپنے نام کو رکھنے کے لیے ایک جگہ چن لی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میں لوگوں سے ملاقات کروں گا.
And he chose a place to put his name, and where he put his name, that's where he met Israel.
اس نے اپنا نام رکھنے کے لیے ایک جگہ چن لی تھی اور جہاں اس نے نام رکھا تھا اسی جگہ وہ اسرائیل سے ملاقات کرتا تھا.
He's got a place that he meets his church today, and he chose that name. That name is Jesus Christ.
اس نے ایک جگہ مقرر کر رکھی ہے جہاں آج بھی وہ اپنی کلیسیا سے ملاقات کرتا ہے اور اس نے اس نام کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ نام ہے یسوع مسیح.
That's where he meets a true believer when he's in Jesus Christ. That's where God chose to put his name.
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا حقیقی ایماندار سے ملاقات کرتا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح میں ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جو خدا نے اپنے نام کے لیے چنی ہے.
He said, God's name. He said, I came in my Father's name. So that's where God put his name is in Christ, and in Christ is where we can all meet under the shed blood and there have real true fellowship.
آپ کہتے ہیں کیا خدا کا نام؟ یسوع نے کہا میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور یہی وہ جگہ ہے یعنی مسیح جہاں خدا نے اپنا نام رکھا ہے اور مسیحی وہ جگہ ہے جہاں بہائے گئے لہو کے نیچے ہم سب خدا کے ساتھ سچی رفاقت اور حقیقی ملاقات کر سکتے ہیں.
God made his program at the beginning in the Garden of Eden where the place he would meet man, and that wasn't upon intellectual understandings. If it had, Eve was exactly in line with his program.
خدا نے ابتدا ہی سے یعنی باغ عدن سے یہ منصوبہ بنایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ انسان سے ملاقات کرے گا، اور یہ بات ذہنی سمجھداری پر منحصر نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہوا بالکل اس کے منصوبہ میں تھی۔
But we know that her accepting Satan's intellectual conception, surely God will not, but God said he would.
لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہوا کا شیطان کو قبول کرنا ہی ذہنی تصور تھا۔ واقعی خدا ایسا نہیں کرے گا، لیکن خدا نے کہا تھا وہ کرے گا۔
And so then he chose a place of redemption, and it was by blood and not by intellectual conceptions.
اور تب خدا نے کفارے کی جگہ کا انتخاب کیا، اور یہ کسی ذہنی تصور کے ذریعہ نہیں، یہ خون کے ذریعہ سے تھا۔
So we're only beating the air, but it's just human nature that people will try to do that.
ہم صرف ہوا میں مکے مارے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ لوگ ایسے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔
If we had time, we could break it down in many pieces, but I don't want that button, so we'll just try to make it as simple as possible, leaking cisterns.
اور اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم اسے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ بس ہم صرف شکستہ ہاؤس کو جتنا ممکن ہوا آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔
And we find that it's absolutely happened again. It's a very picture of our age that we're living in, of all of our trying.
اور ہم اس بات سے واقف ہیں، بالکل یہی بات دوبارہ وارد ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ہی زمانے کی تصویر کشی ہے جس میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
And no disregards to ever effort that any servant of God that even names the name of Jesus Christ, he ought to be honored for just even naming his name in reverence and respect.
کسی بھی خدا کے خادم کی کسی کوشش کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جو یسوع مسیح کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نام دیے جانے پر ضروری فخر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نام میں عزت اور احترام ہے۔
And the great evangelistical systems that's crossed the earth and so forth in these last days, I think still we'll never be able to get people in one heart until we get them underneath the blood of Jesus Christ. That's the only place that we'll ever be safely.
اسی طرح اس عظیم خوشخبری کے نظام نے ان آخری دنوں میں زمین کو عبور کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تب تک ہم اس قابل نہ ہوں گے کہ لوگوں کو یکدل کر لیں جب تک ہم ان لوگوں کو یسوع مسیح کے خون کے نیچے نہ لے آئیں، کیونکہ صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نجات پائیں گے۔
Someone called me not long ago from up in the east and said, Brother Branham, I hear you've moved out to Arizona and you farmed a place there where they safety.
زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ کسی شخص نے مجھے مشرق کے اوپر کے علاقہ سے کال کی اور کہا، بھائی برہنم، میں نے سنا ہے کہ آپ ایریزونا سے باہر منتقل ہو گئے ہیں اور آپ نے وہیں کہیں ایک جگہ کی بنیاد رکھی ہے تاکہ وہاں محفوظ رہ
سکیں۔
آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پیغام کیسے آیا، اور خداون نے مجھے بتایا تھا کہ الاسکا میں کیا واقعہ ہوگا اور کیسے کیلیفورنیا اس کے ذریعے نیچے کی جانب جائے گا، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہوا۔ انہوں نے کہا، اب اگر یہ اور ساری چیزیں جنبش کھا رہی ہیں تو محفوظ جگہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، ایک محفوظ جگہ ہے جس کے متعلق میں جانتا ہوں، اور وہ مسیح ہے، کیونکہ جو مسیح میں ہیں وہ، بس یہی وہ محفوظ جگہ ہے جس کے متعلق میں جانتا ہوں۔
Now Jeremiah was called also the weeping prophet.
اب اسی طرح یرمیہ بلایا ہوا تھا اور رونے والا نبی تھا۔
And because I believe that made this prophet weep was because him being a prophet and the word of the Lord comes to such and seeing the people walk after their traditions and thought they were all right and no way at all to turn them.
اور کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اسی بات نے اس نبی کو رونے والا بنایا تھا، بلکہ وہ ایک نبی ہونے کے ناطے، اور خداوند کا کلام نبیوں کے پاس ہی آتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی ہی رسم و رواج کے پیچھے چل رہے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ بالکل درست ہیں، اور کوئی طریقہ نہ تھا جہاں سے ان کو واپس موڑا جاتا۔
For there's going straight to exile because we know you reap what you sow, regardless of who you are, what you are. And we as a nation have reaped, or sowed rather, and we've got to reap.
क्योंकि वो सीधे असीरी में जा रहे थे और हम इस बात से वाकिफ हैं कि जैसा बीजते हैं वैसा ही काटते हैं, इस बात से कता नजर कि आप कौन हैं और क्या हैं। और हम एक कौम होते हुए वही काटते हैं जो बोया था, बल्कि किसी हद तक हम वही काट रहे हैं।
I'm speaking tomorrow, the Lord willing, at afternoon on birth pains, and I touch that in there, that we cannot get by with nothing. We've got to reap what we sow.
खुदावन की मर्जी से कल सपहर मैं आपको दर्द जे के मुतालिक बताऊंगा, और मैं इस सबक में से इस बात को छूऊंगा कि जो कुछ है ही नहीं हम उसके जरिए से कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हमने वही काटा जो हमने बोया।
And if God would let us get by with our perversion of Christianity today and perverting the people into these things that so called Christianity, as Brother Moore once said, he'd be morally obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up.
अगर खुदा आज हमें गुमराह मसीहत और इन चीजों के साथ जो लोगों को गुमराह कर रही हैं कबूल कर लेता है, तो जैसा भाई मूर ने इसके मुतालिक एक बार कहा था, तो वो इखलाकी तौर पर पाबंद हो जाएगा कि सदूम और अमूरा को उठाए और उनके जलाने पर उनसे माजरत करे, और लोग जिन चीजों से गुमराह हो रहे हैं वो नाम नहाद मसीहत है।
It's becoming to His holiness and His word that He makes people reap for what they sow, and we'll have to do that.
ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि खुदा अभी तक आदिल है, और जहां बेइंसाफी पाई गई है, ये उसकी पाकीज़गी और उसका कलाम है जो लोगों को ऐसा बना रहा होता है कि जो उन्होंने बोया वही काटें, और हमें भी ऐसे कामों के लिए यही करना पड़ेगा।
Now, notice they had left Him the fountain of living waters and hewed themselves cisterns.
अब आपने गौर किया कि वो खुदा यानी आबे हयात के चश्मे को छोड़ चुके थे और उन लोगों ने खुद हौज खोद लिए थे।
Now there may be somebody here who wouldn't understand what a cistern is. A cistern is a man-made tank that tries to take the place of a well. It's something that somebody dug.
अब हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा शख्स भी हो जो ना समझता हो कि एक हाउस क्या है। एक हाउस इंसान के हाथ का बनाया गया तालाब या टैंक होता है जिसने कोशिश की कि वो एक कुएं की जगह ले ले। ये कुछ ऐसी ही चीज है जिसे किसी इंसान ने खोदा हुआ हो।
And how many knows what a cistern is? Fine. All right. A lot of country people here this morning.
और कितने जानते हैं कि एक हाउस क्या है? बहुत बेहतर, ठीक है, जैसा कि आज सुबह इस मुल्क के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं।
I remember the old cistern at the place, how it looked. I was always afraid to drink from the thing.
बस ये मुझे वो पुराना हाउस याद है जो उस जगह पर था, और ये कैसा नजर आता था, और मैं हमेशा ऐसे हाउस से पानी पीने से डरता था।
It was a man-made tank, and it never can be relied on. You cannot rely on a cistern.
क्योंकि उसे एक इंसान ने बनाया था और उस पर कभी भी इतबार नहीं किया जा सकता था। आप एक ऐसे हाउस पर तकिया नहीं कर सकते।
Now, anything that man does is usually not very good.
अब अगर इंसान कुछ भी करता है तो वो अक्सर बहुत अच्छा नहीं होता।
But just like the Lord set time into its cycle and the earth turning. Every year, every time it crosses, every day, every hour, and the sun setting, and it never fails.
लेकिन ये सिर्फ इस तरह है जैसे कि खुदावन ने वक्त मुकरर कर दिया। इसे इस मदार में घूमना है और जमीन घूमती रहती है। ये हर साल, हर वक्त, हर दिन और हर पल गर्दिश करती रहती है, और सूरज का अमल भी मुकरर है, और ये अमल कभी नाकाम नहीं होता।
But the very best watches we can get a fail in many minutes in a month's time, no doubt.
हम बहुत बेहतरीन घड़ियां हासिल कर सकते हैं, यकीनन ये एक महीने के दौरान ही बहुत से मिनटों को आगे पीछे करके नाकाम हो जाएंगी, और इस बात में जरा भी शक नहीं है।
But you see, everything God does is perfect, and what man does is imperfect. So why accept what man does when you can have perfect?
लेकिन आप देखें کہ انسان جو کچھ بناتا ہے وہ نامکمل ہے، لیکن خدا کی ہر ایک بنائی ہوئی چیز کامل ہے۔ تو پھر آپ انسان کی بنائی ہوئی چیز کیوں قبول کرتے ہیں جبکہ آپ کامل حاصل کر سکتے ہوں؟
I've always said that about us Pentecostal people. See, we know, and we're not out of the order, of course, of God. We don't believe.
اور میں نے ہمیشہ ان باتوں کے متعلق اپنے پینتیکوسٹل لوگوں کو بتایا ہے، دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ہم بے شک خدا کی ترتیب سے باہر نہیں ہیں، کیا ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟
But we also know that among us we have people who try to impersonate the other fellow. That's just human. They'll try to do that.
بس ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی اور شخص کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شخص بھی تو ایک انسان ہے مگر وہ ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بائبل میں بھی ایسا ہی کیا، ایک کہتا ہے میں پالوس کا ہوں جبکہ دوسرا کہتا ہے میں سلاس کا ہوں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نے کیا کیا یا کیا کر رہا ہے۔
But why would you accept a false impersonation when the skies are full of the genuine thing? When the promise isn't to you and to your children? Why would we accept something that was different?
لیکن ایک آپ ایسے جھوٹے نقل کرنے والے کو کیوں قبول کریں گے جبکہ آسمان حقیقی چیزوں سے معمور ہے، جبکہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد سے ہے؟ تو پھر ہم ایسی چیز کو کیوں قبول کریں گے جو کہ مختلف ہے؟
Why would we take up a creed or a dogma when the Bible is the unadulterated word of God?
کیوں ہم ایک عقیدہ یا ایک رسم کو لیں گے جبکہ بائبل خدا کا خالص کلام ہے؟
Why would we try to add to or take from when the Lord Jesus said in Revelation 22:18, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life?
تو پھر کیوں ہم اس میں کچھ بڑھانے یا گھٹانے کی کوشش کریں گے جبکہ خداوند یسوع نے مکاشفہ 22:18 میں کہا، جو کوئی بھی اس میں ایک لفظ بڑھائے یا اس میں سے ایک لفظ گھٹائے تو اس کا حصہ کتاب حیات میں سے نکال دیا جائے گا۔
When God first set the human race on earth, he told them they live by his word.
جب خدا نے پہلی دفعہ نسل انسانی کو زمین پر رکھا تو انہیں بتایا کہ وہ اس کے کلام کے وسیلہ زندہ رہیں گے۔
Now, the word of God is like a chain. You're passing across hell with it. And it chains only its best at its weakest link. And God wants us to keep every word of it.
اب خدا کا کلام ایک زنجیر کی مانند ہے اور آپ اسی سے دوزخ کو پار کر سکتے ہیں، اور یہ زنجیر وہیں سے بہترین ہوتی ہے جہاں اس کا کمزور جوڑ ہوتا ہے، اور خدا بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے ہر لفظ کو تھامے رہیں۔
Now that's the first of the Bible. Just to break one word plunges the human race into a darkness of death.
اب یہ بائبل کا پہلا حصہ تھا جس میں سے ایک لفظ کو توڑا گیا اور نسل انسانی موت کی تاریکی میں داخل ہو کر ڈوب گئی۔
Jesus came in the middle of the Bible and he said that man shall not live by bread alone but by every word.
یسوع مسیح بائبل کے وسط میں آیا اور اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے۔
Not just part of the words or 99 out of 100, but every word, just like even Adam was.
اگر 100 میں سے 99% بھی ہو تو بھی یہ پورا کلام نہیں بلکہ ہر ایک لفظ سے، جیسے کہ آدم اور ہوا کے لیے تھا۔
And in the last of the Bible, Revelation 22:18, he said that whosoever shall take a word out of this or add one word to it.
اور بائبل کے آخر میں مکاشفہ 22:18 میں اس نے کہا، جو کوئی بھی اس میں سے ایک لفظ بڑھائے یا اس میں سے ایک لفظ گھٹائے۔
So why do we need to inject in here somebody's ideas of things when this is God's own idea about it? We want to take what he said, and it's also written, let every man's word be a lie and mine be the truth.
پس ہم کیوں ایسی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کسی انسانی نظریے کی باتوں کو شامل کریں جبکہ خدا کا اپنا نظریہ اس کے متعلق موجود ہے؟ ہم وہی بات لینا چاہتے ہیں جو اس نے کہی ہے، کیونکہ ایسا لکھا ہے کہ ہر ایک انسان کا کلام جھوٹا ٹھہرے اور میرا کلام سچا ٹھہرے۔
That's what Samaritan's prophet in the days of Jeremiah. He was a prophet, he had the word of the Lord, and this fellow was trying to inject something to it. Now, it cannot be relied upon.
اس نبی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو یرمیا کے زمانے میں تھا؟ وہ ایک نبی تھا اس کے پاس خداوند کا کلام تھا اور وہ شخص ایسی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں کچھ شامل کر دے اور اب اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا.
And I'm likening these tanks now to these systems that we have tried to take and to take the place of the original word of God.
اور اب میں ان حوضوں کے متعلق بات کر رہا ہوں جو کہ ایسے نظام ہیں جنہیں ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خدا کے حقیقی کلام کی جگہ لے لیں.
For nothing can take its place. It is God.
تو بھی کلام کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اس لیے کہ یہ خدا ہے.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا.
And Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today and forever. How can we rub away from that?
اور عبرانیوں 13:8 میں لکھا ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. ہم کلام میں سے اس بات کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟
It's got to be the truth. He remains the same. He's the same in every principle.
اس بات کو سچ ہونا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ایک جیسا ہے. وہ ہر اصول میں یکساں ہے.
That's the reason you enjoy you Baptists and Methodists and Catholic and Presbyterians and so forth. Enjoy that presence somewhere in you. You've accepted God.
یہی وجہ ہے کہ آپ اس سے مسرور ہوتے ہیں. آپ میتھوڈسٹ اور بیپٹسٹ، کیتھولک اور پریسبیٹیرین، اسی طرح دوسرے لوگ اس کی حضوری میں لطف اندوز ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ اپنے اندر آپ خدا کو قبول کر چکے ہیں.
Maybe sometime in an intellectual way, maybe you have felt the power of God and you are a servant of God, but when you can really come into God and recognize your place in him as a son or a daughter of God, that's what brings that great thrill to you that God intended you to have.
ہو سکتا ہے کسی وقت دانشورانہ طریقے سے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی قوت محسوس کر چکے ہوں، اس لیے آپ خدا کے خادم ہیں. لیکن جب آپ حقیقت میں خدا کے اندر آ جاتے ہیں اور اس میں اپنی جگہ کو پہچان جاتے ہیں، جیسے کہ خدا کا ایک بیٹا یا بیٹی ہو جو کہ آپ کے اندر یہ عظیم جوش دلاتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو.
Now, we noticed in St. Mark, the 16th chapter, Jesus did not say, go ye into all the world and teach. He said, go preach the gospel.
اب ہم مقدس مرکز کی انجیل 16 باب میں توجہ دیتے ہیں. یسوع نے ایسا نہیں کہا تھا کہ ساری دنیا میں جاؤ اور تعلیم دو، بلکہ اس نے کہا جاؤ اور انجیل کی منادی کرو.
Preach the gospel is demonstrating the power of the Holy Spirit. Go into all the world and demonstrate the power of the Holy Ghost.
انجیل کی منادی کرنا یہ ہے کہ روح القدس کی قدرت ظاہر ہو. ساری دنیا میں جاؤ اور روح القدس کی قدرت کو آشکارا کرو.
Talking to a brother, one of the sponsors on the meeting in India, in Bombay there, down in South Africa and different places, where the missionaries had taught it as a word or as an intellectual conception.
Ek bhai se, jo ke mera sponsor tha, usse baat ho rahi thi, jisne meri ibadat Bombay, India aur Janubi Afrika mein mukhtalif maqamat par munaqqad karwai thi, jahan missionariyon ne logo ko sikha rakha tha, kalam aise hi hai, جیسے ایک لفظ یا ایک ذہنی تصور.
But one day in the meeting when the Holy Spirit came down himself and saved 30,000 blanket natives at one altar call, right on the same ground where they were standing.
لیکن ایک دن عبادت میں جب روح القدس خود نیچے آیا اور اسی جگہ پر جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک ہی دفعہ مذبح پر بلائے جانے پر 30,000 لوگوں نے جو مقامی باشندے تھے نجات حاصل کر لی.
Women standing there who had been as naked as they almost were when they come into the world. And the very minute that they raised their hands to receive Christ and the Holy Spirit fell upon the place and healed 25,000 people at one time off of wheelchairs, cots and stretchers.
اور اسی جگہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں جنہوں نے محسوس کیا کہ وہ برہنہ ہیں. جب سے وہ تقریباً دنیا میں پیدا ہوئی تھی اور اسی گھڑی انہوں نے مسیح کو قبول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور روح القدس اسی جگہ نازل ہوا اور ایک ہی وقت میں 25,000 لوگوں نے شفا پائی. لوگ ویل چیئرز اور چارپائیاں اور اسٹریچرز وغیرہ وہیں چھوڑ گئے.
The mayor of the city had me next day look at these van loads going down the street.
اور اگلے دن شہر کا میئر میرے پاس تھا اور ہم ان چیزوں سے بڑے ٹرک کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے.
Them women standing there naked, not knowing they were naked, but as soon as the Holy Spirit struck them, they folded their arms to walk away from the presence of their man.
اور جو عورتیں وہاں کھڑی تھیں وہ برہنہ تھیں، जबकि वो उस बात को ना जानती थी कि वो बरहन्ना है, लेकिन उसी घड़ी रूहुल कुदस ने उन्हें छुआ और उन्होंने अपने बाजू अपने चौगिर्द लपेट लिए और जिस जगह पर उनके आदमी खड़े थे फौरन उनसे दूर चली गईं।
And I'm wondering how that we in America call ourselves a Christian nation and in the presence of God, and each year we our women take off more and you ought to be putting on more.
और मैं हैरान हो रहा था कि हम अमरीकी कैसे अपने आप को खुदा की हजूरी में एक मसीही कौम कहते हैं और हर साल हम और हमारी औरतें मजीद बरहन्ना होती जा रही हैं, हालांकि आपको चाहिए कि हयादार लबास जेब तन करें।
And more Christ you put on, the more conscious you will be of your own conditions.
और मसीह को अपने ऊपर मजीद पहने तब आप मजीद अपने हवाल पर होशमंद होंगे।
Sometimes I see the way people act on the street, I wonder if it's just exactly mentally right.
बाज़ औक़ात मैंने सड़क पर चलते हुए लोगों को ऐसे काम करते देखा है और मैं हैरान होता हूँ, क्या वाकया ही ये ज़हनी तौर पर दुरुस्त है?
Seems like they don't realize that when they do that, what they are doing, they're making themselves a bait for the devil and to send souls to hell. That's right, but the world is in a corruption like it was in the days of Jeremiah.
ऐसा लगता है कि जब वो ये करते हैं तो उनको इसका एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो लोग अपने आप को शैतान का चारा बना रहे हैं और रूहों को जहन्नम में धकेल रहे हैं, और ये सच है, और दुनिया इस बुराई में मुब्तला है जैसा कि यर्मिया के दिनों में थी।
Now, back to the sister. Now this sister cannot be relied upon because it cannot fill itself.
अब आइए वापिस हौज पर चलते हैं। अब इस हौज पर तकिया नहीं किया जा सकता क्योंकि ये खुद अपने आप को भर नहीं सकता।
And it has to depend upon the local rains to fill it. The local rains of the local revivals to have a little revival here and a little revival over there or so forth to get it filled up.
और ये मुकामी बारिश पर तकिया करता है कि इसे भरे, मुकामी बारिश या मुकामी बेदारी, इसी तरह यानी थोड़ी बेदारी यहाँ थोड़ी बेदारी वहाँ से लेकर बढ़ता है।
So it cannot be relied on. It can't fill itself. It's insufficiency to itself. It cannot do it. And it's got to depend on the rains to fill it.
इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो अपने आप को नहीं भर सकता, ये तो अपने आप के लिए नाकाफी है, इसलिए ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो खुद बारिश पर भरोसा करता है कि वो इसे भरे।
Then let's notice where it gets its rain, where it gets its water, the cistern.
तो फिर आइए गौर करते हैं कैसे यह उस कहां से इस बारिश को और इस पानी को हासिल करता है।
It comes off the top of the barn shed. Where all the dirt that the dust blows up there washes right into the rain and right down into the cistern. A man-made tank.
जब बारिश खलियानों और झोंपड़ियों के ऊपर पड़ती है तो यही बारिश उस पर जमी हुई गंदगी और आलूदगी को धोती है, और ठीक यही पानी बहता हुआ एक इंसान के बनाए हुए हाउस में दाखिल होता है।
It becomes almost like a cesspool.
फिर ये तकरीबन एक गटर की तरह बन जाता है।
And it washes off the top of the barn. Where all the animals of the smell in the barnyards and so forth and settle down and the air blows in the dust and stuff on the barn and the local rain comes along and washes the rain right off.
और बारिश उन मकामात को भी धोती है जहाँ हर किस्म के जानवर होते हैं, उन बाड़ों में बदबू भी होती है और वगैरह वगैरह, और बारिश वहाँ बरसती है और जब हवा में मट्टी उड़ती है तो वो खलियानों की हर शय पर पड़ती है, और तब ठीक यही बारिश उन मकामात से गुजरती और उनको धोती हुई आती है।
And then the water is carried by a man-made trough through a man-made spout to a man-made tank. And then when it gets there, it's filthy, so filthy that you have to put a strainer rag on it or you couldn't drink it.
और तब ये पानी इंसान के अपने बनाए गए रास्ते से उसके बनाए गए हाउस में दाखिल होता है, और तब जब ये पानी वहाँ जमा हो जाता है तो ये आलूदा हो जाता है, बस ये इतना आलूदा होता है कि अगर आप इसे छाने भी तो भी ये पीने के लायक नहीं होता।
Now, see, it's washing from the roof by a man-made trough, man-made spout into a man-made tank.
अब देखें, ये छतों को धोता हुआ एक इंसान के बनाए गए रास्ते के जरिया इंसान के बनाए हुए हाउस में दाखिल होता है।
And then it was a man-made strainer over the top of it to see that some of the bugs and things is kept back.
और तब इसे इंसान की बनाई गई छलनी से छाना जाता है तो भी देखें कि कैसे कीड़े मकोड़े और दूसरी चीजें पीछे ही रह जाती हैं।
Now we notice in these a few days after the water set there in this man-made denominator or tank. Excuse me. All right.
अब हम इस पानी पर गौर करते हैं जो चंद दिन पहले इंसान के बनाए गए हाउस में या तंजीम में जमा हो गया था। मुझे माफ करना, ठीक है।
After it's been washed off of all kinds of theologies and things washed into it, now we come to find out when it sits there a few days, it becomes stagnant.
जब ये पानी सारी धुलाई कर चुका तो हर किस्म की इल्मे इलाहियात और दूसरी चीजें जो धुल गई थी बहते हुए इसमें दाखिल हो गईं। और अब जब हम इसके करीब आते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब ये पानी इसमें कुछ दिन ठहरा रहता है तो ये बहता नहीं बल्कि बेहिस्सो हरकत हो जाता है।
And anyone knows in the history of the church, when God sends something forth, a message, and it becomes fresh from God.
और हर कोई जानता है कि कलीसिया की तारीख में जब खुदा अपने सामने एक पैगाम भेजता है तो वो खुदा की तरफ से ताजा होता है।
Then, actually, the life of that founder, whatever it might be, you call him reformer or whatever you want to say about it, after his death, then they get a system worked up and they make an organization.
और फिर उस बानी की जिंदगी के बाद, ये शायद आप इसे सलाहकार पुकारते हैं या कुछ भी आप चाहें इसे कह सकते हैं, मगर उसकी मौत के बाद तब वो एक निजाम अपना लेते हैं, फिर मुनज्जम हो जाते हैं।
And as soon as they make an organization out of that, it dies right there. It never rises again. It's did it through every time back, come on back.
और जैसे ही वो मुनज्जम हो जाते हैं तो उससे बाहर निकल जाते हैं और तब ठीक वहीं खत्म हो जाते हैं, फिर ये दोबारा कभी नहीं उठते। और पीछे हर जमाने में यही किया गया और इसी तरीके की पैरवी की गई।
Giving regards to this Catholic priest sitting here, when God organized the church or not organized it, God never did organize the church. He's not in that kind of a business. He's in birth, not organization.
यहाँ कैथोलिक प्रीस्ट का बैठने का एहतराम करते हुए, जब खुदा ने कलीसिया को तरतीब दिया या ना कि उसको मुनज्जम किया, खुदा ने कभी कलीसिया को मुनज्जम नहीं किया। वो इस किस्म का कोई काम नहीं करता।
So when God started the church off at the day of Pentecost, and then finally down at Nicaea, Rome, they organized it, and there's where it lost its power.
क्योंकि जब खुदा ने ईदे पेंतिकोस के दिन कलीसिया को शुरू किया तो वो इसकी पैदावार में है, ना कि उसे मुनज्जम किया। और आखिरकार नासिए रोम में उन्होंने इसे मुनज्जम किया, वहाँ उसने अपनी कुव्वत को खो दिया।
Then we come on down to the Lutheran Reformation, and it was a great thing. The word of God was given, just shall live by faith.
जब हम लूथरन असलाकार की तरफ आते हैं तो ये एक बड़ी अजीम बात थी, क्योंकि खुदा का कलाम दिया गया था कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा।
And when they did, instead of picking up all of them together and marching on, they made a Lutheran church, separating themselves from this group. And then it died.
जब उन्होंने ये किया कि कलाम का इंतखाब करने की बजाय सब एक साथ मिल गए और उनमें से सब ने बाकायदा कदम उठाया, तब उन्होंने एक लूथरन कलीसिया बना ली और खुद को इस ग्रोह से अलग कर लिया और फिर वो मर गए।
Then God raised up John Wesley with the sanctification, the message of the second work of grace, and it was a wonderful thing. But after Wesley and Asbury, they organized it. It died.
और तब खुदा ने जॉन वेस्ली को तकदीस के साथ, फजल के पैगाम के साथ उठा खड़ा किया, और ये बड़ी शानदार बात थी। लेकिन वेस्ली और एसबेरी के बाद उन्होंने इसे मुनज्जम कर लिया और ये मर गए।
Then up come the Pentecostals with the restoration of the gifts. They were doing fine. What happened? Organized it. It died. Just exactly.
और फिर पेंतिकोस्टल नियमतों की बहाली के साथ आ मौजूद हुए। ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहे थे, मगर क्या हुआ, उन्होंने भी इसे मुनज्जम किया और फिर मर गए। ये बिल्कुल ठीक है।
Now in the midst of all this, God still calling a remnant out of every one of those generations. And it's our time of coming out, a gathering together.
खुदा अब इन सब के दरमियान से और तमाम नस्लों में से हर एक बकिया को बुला रहा है। वो यकीनन ऐसा कर रहा है, और ये हमारा वक्त है, बाहर आएं और इकट्ठे हो जाएं।
That's what I think the full gospel businessman has played a great part in breaking down these walls and saying that there's no difference in us. Let us come together and worship God under one principle, not under an organization.
और यही मेरा ख्याल है, क्योंकि फुल गॉस्पल बिजनेसमैन वालों ने दीवारों को तोड़ने में बड़ा अहम काम किया है, और वो ये कहते हैं कि हम इंसानों में कोई फर्क नहीं, इसलिए आए हम इकट्ठे होकर खुदा के कानून के तहत उसकी इबादत करें, ना कि किसी तंजीम के मुतहत। अगर ये भी मुनज्जम होते हैं तो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दूंगा, तो फिर मेरा इनके साथ कोई वास्ता नहीं। ये क्या है? इसे तो एक रफाकत ही होना है, ना कि किसी एक अकीदे की रफाकत, बल्कि मसीह की रफाकत उसके जी उठने की कुव्वत से। यही वो चीज है जो जिंदगी लाती है, यही पदेश लाती है।
And before birth can come, we realize there have to be death before birth.
इससे पहले के जन्म हो, हम जानते हैं जन्म से पहले मरना पड़ता है।
And a birth is a mess. I don't care what kind of a birth it is. If it's in a pig pen or wherever it is, it's a mess. And so is a new birth. It makes you do things that ordinarily you wouldn't think you would do.
और एक जन्म एक उलझन है, मुझे परवाह नहीं ये किसी भी किस्म का जन्म हो, चाहे ये सुरों के अस्तबल में हो या ये कैसे भी हो, लेकिन ये एक उलझन है। लेकिन नए सिरे से जन्म लेना आपको इस तरह का बनाता है कि आप वो काम करते हैं जो के अमूमन आप सोचते नहीं लेकिन करते हैं।
But when you're ready to die to yourself, then you're born again, a new creature in Christ Jesus. Then things open up and life becomes a new sight to you because you've accepted the person of Jesus Christ and not some theory or some creed.
लेकिन जब आप खुद को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर आप नए सिरे से पैदा होते हैं और मसीह में नए मखलूक बनते हैं। फिर चीजें खुलती हैं और जिंदगी आपको नई बेनाई देती है, क्योंकि आपने किसी अकीदे या किसी नजरिए को कबूल नहीं किया, बल्कि आपने यीशु मसीह जैसी शख्सियत को कबूल किया है।
Even to the written word, it's got to be quickened by the Holy Spirit. No matter how much theology you've got, it's laying there dead.
अगरचे लिखा हुआ कलाम भी रूह कुछ के वसीला से जिंदा हुआ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इल्मे इलाहियात की कितनी तालीम हासिल कर चुके हैं, ये यहाँ मुर्दा हालत में पड़ी रहती है। मेरे पास एक मुट्ठी गंदुम हो सकती है, लेकिन जब तक ये उस अमल से नहीं गुजरती जहाँ उसे जिंदा होना है, तो तब तक ये गंदुम जिंदा नहीं होगी।
Have a doctor's degree, PhLL, whatever you wish to, but until the Holy Spirit comes upon that and quickens it to you, has a personal experience with God, then the wheat does no good. Your learning is in vain.
आपके पास एक डॉक्टर की डिग्री हो सकती है, चाहे वो पीएच या एलएल हो, जो कुछ भी आपको चाहिए, लेकिन जब तक रूहुल कुछ उस पर नहीं आता और इस चीज को आपके लिए जिंदा नहीं करता और आपका खुदा के साथ शख्सी तौर पर तजर्बा नहीं होता, तब तक वो गंदम कुछ बला नहीं कर सकती। आप बेफायदा सीख रहे
हैं।
जैसे कि किसी रात इंग्लैंड से आए हुए उस शख्स ने कहा था, और मैं उस पर हैरान हो रहा था, वो उसकी मश कर रहा था जो सब उसने सीखा था। इसी तरह पालूस भी था, मगर जब उसने मसीह के नज्म जब्त को पा लिया तो बाकी सब इल्म जो उसके पास था उसे भूल गया था और उसने वो काम किए जो उसने सोचे भी ना थे कि वो करेगा।
But that's what God does. He humiliates us in our educational system. Not as I'm trying to support ignorance, but I'm trying to tell you the difference.
और यही तरीका है जिससे खुदा काम करता है। वो हमारे तालीमी निजाम में भी हमें खाकसार बनाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जहालत की हमायत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
Education can never bring life. It takes the Spirit of God to bring life. And that life must not come out of just the intellectual revival.
तालीम कभी भी जिंदगी नहीं ला सकती, लेकिन खुदा का रूह इसे लेता और जिंदा करता है, और उस जिंदगी को कभी भी ज़हनी बेदारी से नहीं आना चाहिए।
It's got to come out of the Bible. Word revival, and that word is the same yesterday, today, and forever. And when it falls today and quickens, you get the same results you did in Acts 2. Exactly.
बल्कि इसे तो बाइबल कलाम मुकद्दस की बेदारी से आना चाहिए, क्योंकि ये कलाम कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और जैसा आपने इमाल 2 में देखा और नतीजा अक्स किया, तो जब आज ये नाजिल होता है तो इसे बिल्कुल वैसे ही जिंदा करना है, बिल्कुल वैसे ही।
And always will be because it's the Spirit of God, the conditions, the atmosphere. It takes atmosphere to do things.
ये हमेशा से ऐसा है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये खुदा का रूह है और ये माहौल की कैफियत पर मुनस्सर करता है। वो काम करने के लिए माहौल को लेता है। यही वजह है कि आप लोगों ने हमेशा इस बात को सीखा है कि अपने बच्चों को गिरजाघर में लाएं। ठीक है, और यकीनन ये दुरुस्त बात है। और कुछ ही मिनट पहले मैं अपनी बेटी रिबेका को यहाँ बैठे हुए देखकर बड़ा खुश हुआ था, और आप में से कुछ लोगों ने मुझे एक खातून को इशारा करते हुए देखा था, और वो खातून अंदर आई और बैठ गई। ये मेरी बेटी थी।
I want her to receive the baptism of the Spirit. That's why she's here in the meeting. That's what the purpose of it. It takes at the Spirit.
और मैं चाहता हूँ कि ये रूह कुछ का बपतिस्मा हासिल करे, और यही वजह है कि वो आज इस इबादत में मौजूद है, और यही उसका मकसद है, क्योंकि वो माहौल को लेता है।
So, Dr. Bosworth, you say you can take a hen egg and put it under a pup, it'll hatch a chicken. Why? Because it's an egg and got the right atmosphere.
जैसे कि बुजुर्ग डॉक्टर बोसवर्थ अक्सर कहा करते हैं कि आप मुर्गी का एक अंडा लेकर उससे बच्चा निकलवाने के लिए मुर्गी के नीचे रख सकते हैं, और इससे एक चूजा जन्म लेगा। क्यों? इसलिए कि ये एक अंडा है और इसे ठीक माहौल में रखा गया है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन हैं, लेकिन अगर आप दुरुस्त माहौल में हैं, तो फिर ये माहौल खुदा के एक नए सिरे से पैदा होने वाले बच्चे को जन्म देगा। कोई मसला नहीं चाहे आप पर किसी भी तंजीम की मोर लगी हो, लेकिन ये माहौल ही है जो ऐसा करता है।
feeding lands down to ranches and put them on a forest. He would stand there and watch as he went through the gate at the drift fence.
जब हम मवेशियों का गल्ला चराते थे तो मैंने उस गिनती करने वाले मुहाफिज पर ध्यान दिया था, जब वो मवेशियों को जंगल में ले जाते और उस जगह पर जहां चारा ज्यादा होता था मवेशी ले जाते थे, और फिर उन्हें उसी रास्ते से वापस ले आते थे जो बाड़ वहां लगाई थी। जब मवेशी वहां पहुंचते और जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगते तो वो शख्स वहां खड़ा होता और उन्हें गौर से देखता था।
He never paid so much attention to brands because there's all kinds of brands went through there. But there's one thing he did notice, the blood tag.
लेकिन उन पर दागे गए निशानों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि जितने मवेशी जाते थे उन पर काफी किस्म के निशान होते थे, लेकिन एक बात थी जिस पर वो ध्यान देता था, वो उनकी नस्ल पर ध्यान देता था।
It had to be a thoroughbred Hereford or it could not go on that forest because it's the Hereford Association that grazes that forest. It must have a blood tag to keep the breeding right.
वो मवेशी जो बाढ़ की उस तरफ जाएगा उसे एक हेयरफोर्ड की खालिस नस्ल होना था, वरना ये उस जंगल में नहीं जा सकता था, क्योंकि ये हेयरफोर्ड एसोसिएशन के मवेशी चराने की जगह थी। अच्छी नस्ल कायम रखने के लिए जरूर ही नस्ली निशान होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ यही तरीका अदालत के दिन होगा। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैं मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल या प्रेस्बिटेरियन हूँ, लेकिन वो तो सिर्फ लहू का निशान देखेगा। जब मैं लहू को देखता हूँ तो गुजर जाऊंगा। बस यही बात है।
So we find that these cisterns, after they sit around a while, they become stagnant and they are no good.
बस हम इन हौजों के गिर्दा गिर्द कुछ अरसा गुजर जाने के बाद यूं पाते हैं कि वो बेहरकत हो जाते हैं और वो नफीस नहीं रहते।
And it becomes then also becomes the home of frogs and lizards and snakes and bugs, germs and what more, because it's the stagnated condition that's pushed into it.
और फिर वो इस तरह, जिस तरह के वो मेंढकों, चिपकलियों, सांपों, कीड़े मकोड़ों और जरासीम या कुछ मजीद कीड़ों का घर बन जाते हैं, क्योंकि ये एक गैर मुतहरक हालत है और पानी इसमें धकेल दिया गया है।
Could you imagine washing off of a barn roof or off of a house close to the barn or anywhere the dirt would be? How kind of a bugs and germs and everything it washes into this cistern?
क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस पानी ने खलियान की छत को धोया और उसी के करीब घर को धोया या किसी भी जगह को जहां गंदगी थी धोया, और यही धुलाई शुदा पानी इस हाउस में दाखिल हो गया, तो इसमें किस किस्म के कीड़े मकोड़े और जरासीम और बाकी सब चीजें होंगी?
Now, it's a perfect example of any kind of a man-made system. He's a failure to begin with. That's the reason he needs a savior.
अब ये इंसान के किसी भी बनाए हुए निजाम की मुकम्मल मिसाल है, जो के इब्तदा ही से नाकाम निजाम है। यही वजह है कि इंसान को एक निजात दहिंदा की जरूरत है।
He could not save himself. He cannot do nothing for it. He's lost to begin with.
इंसान खुद को महफूज नहीं रख सकता और ना ही वो इसके लिए कुछ कर सकता है।
He's born in the world sinful. He comes to the world speaking lies. He's a liar to start with. So how in the world can he do anything for himself?
क्योंकि इंसान इब्तदा ही से खोया हुआ है, क्योंकि इसने गुनाह आलूदा दुनिया में जन्म लिया और वो इस दुनिया में झूठ बोलते हुए आया। वो झूठा है और झूठ के साथ आगाज करता है, तो फिर कैसे ये दुनिया में अपने लिए कोई काम कर सकता है?
How can a holy man? There's no holy man. There's no holy church. It's a holy ghost, not a holy church, a holy people. It's a holy ghost among a people. That's what it is.
कैसे ये एक मुकद्दस इंसान हो सकता है? कोई मुकद्दस इंसान नहीं, कोई मुकद्दस कलीसिया नहीं है। ये तो वाहिद रूहुल कुद्दस है, और ना ही कोई इंसान और ना ही कोई कलीसिया मुकद्दस है, बल्कि ये रूहुल कुद्दस है जो लोगों के दरमियान है। यही तो वो है। आमीन।
Not a holy mountain where Peter and them stood. The mountain wasn't holy, but it's a holy God on the mountain that made it holy.
ना ही वो पहाड़ जहाँ पतरस और दूसरे शागिर्द खड़े थे मुकद्दस था। पहाड़ मुकद्दस ना था, लेकिन ये मुकद्दस खुदा था जो उस पहाड़ पर खड़ा हुआ था, जिसने पहाड़ को मुकद्दस कर दिया।
Not a holy person, it's a holy ghost using that person. What makes it holy? Not the person, but the person of the Holy Ghost.
कोई शख्स मुकद्दस नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्दस है जो उस शख्स में होकर उसे इस्तेमाल करता है और उसे मुकद्दस बना देता है। ना के कोई शख्स मुकद्दस है, बल्कि रूहुल कुद्दस की जात मुकद्दस है।
It isn't the man because he's just a man born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
और ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स सिर्फ एक इंसान है जिसने गुनाह में जन्म लिया और खता में सूरत पकड़ी, जो दुनिया में आकर झूठ बोलता है।
Any man-made system will keep him right in that. You blind the thing from the intellectual eyes that they think I belong to church. My name is on the book. I have did this. My father was this, and so forth.
कोई भी इंसान का बनाया गया तरीका उसे अपनी गिरफ्त में रखेगा, तो वो उस बात की तरफ से अंधा होगा जो दानाई से और इल्म के जरिए आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं चर्च से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा नाम रजिस्टर्ड में दर्ज है, मैंने ये किया और इसी तरह मेरा बाप ये था।
That sounds all right. Which it is, nothing to say against it, but still, friend, Jesus said, except the man be born again, he cannot even see. See there doesn't mean that he sees with his eyes, but understand the kingdom of heaven until you're born into.
ऐसा कहना अच्छा लगता है, जैसा कि ये बात ठीक है, और इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी दोस्तों, यीशु ने कहा, जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, यहाँ तक कि वो देख भी नहीं सकता। यहाँ देखने से मुराद ये नहीं कि उसे अपनी आंखों से देखना है, बल्कि आसमान की बादशाही को समझना है, जब तक आप उसमें पैदा नहीं होते।
How would this Baptist evangelist, how would that man who stood there and criticized and made fun of it, see, there's nothing in him that could even receive it, but God had to do it. See, God gave him the Holy Spirit.
कैसे उस शख्स बैप्टिस्ट मुबशर ने वहाँ खड़े होकर इसका मजाक उड़ाया और इस पर तनकीद की? देखें, वहाँ उसमें कोई ऐसी चीज ना थी कि इसे हासिल करता, लेकिन देखें, खुदा को तो कुछ करना था और खुदा ने उसे रूहुल कुद्दस से नवाज दिया।
He manifested that this is not hypocrisy, this is a word. He only hears it from a school idea. And they try to take all the blessings of God and place it on a day gone by.
खुदा ने जाहिर कर दिया कि ये रेयाकारी नहीं थी, बल्कि ये कलाम था। उस शख्स ने इसे सिर्फ स्कूल के नजरिए से सुना था और वो खुदा की सारी बरकात को लेकर उस दिन के मुकाम पर रखने की कोशिश कर रहे थे जो गुजर चुके हैं।
A young Baptist preacher here not long ago sitting present right here this morning, and he came to me and he said, Brother Branham, there's one thing that you're doing is wrong. I said, Help me.
अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि एक नौजवान बैप्टिस्ट खादम जो आज सुबह भी यहाँ बैठा हुआ है, वो मेरे पास आया और उसने कहा, भाई ब्रहनम, एक बात है जो कि आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा, ये बात बताने में मेरी मदद करें।
And he said, you are, I think you're sincere and a good person, but I said, thank you, sir.
उसने कहा कि आप मेरे ख्याल में एक दयानदार और अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैंने कहा, जनाब, आपका शुक्रिया।
He said, but there's one thing you're doing wrong. I said, I hope the Lord just finds one thing wrong.
उसने कहा, लेकिन एक बात है जो कि आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि खुदावंद वो एक बात भी जाहिर कर देगा।
And he said, well, this is what you're doing, it's wrong. Said you're trying to introduce to the world an apostolic ministry. And said the apostolic ministry ceased with the apostles.
उसने कहा, ठीक है, पर यहाँ ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। उसने कहा, आप कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में रसूली दौर की खिदमत को मुतारिफ करवाएं। और उसने कहा, जबकि रसूली खिदमत रसूलों के साथ ही खत्म हो चुकी है।
I said, as a Baptist, to a Baptist, I'd like to ask you a question.
मैंने कहा, जैसे कि एक बैप्टिस्ट से, तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछना पसंद करूंगा। उसने कहा, क्या?
I said, you believe the word of God inspired every bit of it? He said, well, certainly.
मैंने कहा, क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा का सारा कलाम इल्हाम है? उसने कहा, क्यों नहीं, यकीनन।
I said, then he said, don't add one word or take one far. I said, then I'll show you where the apostolic blessing come on the people by a promise of God. Now you show me the promise of God and when it went off the people.
मैंने कहा, तो फिर खुदा ने कहा है कि ना तू इसमें एक लफ्ज बढ़ाना और ना ही एक लफ्ज निकालना। इसलिए फिर मैंने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि खुदा के वादे के जरिए रसूली बरकत लोगों पर आ रही है। अब क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कहां खुदा का वादा लोगों से मुनकता हो गया? देखें, आप इन बातों को उसके कलाम में बढ़ा नहीं सकते, तो फिर इसके मुतालिक भूल जाए। देखा, मैंने कहा, क्योंकि ये बरकत अब भी जारी है। खुदा ने इस बात को कभी भी कुछ मिनटों के लिए नहीं कहा था। बस मैंने कहा, अच्छा भाई, फिर मैं आपसे पूछना पसंद करूंगा।
Peter introduced the apostolic message on the day of Pentecost, and we all know that's true, for he had the keys of the kingdom and Jesus had given to him.
पत्रस ने ईदे पेंतिकोस के दिन इसी पैगाम को मुतारिफ करवाया, और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि ये बात सच है, क्योंकि उसके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां थी जो यस्सु ने उसके सुपुर्द की थी।
और
अब गौर करें, पत्रस ने कहा था, उसने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे, क्योंकि ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से और उन सब दूर के लोगों से भी है जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। फिर अगर एक भी ऐसी जगह है जहां खुदा ने इस बात को मुनकता कर दिया है, तो फिर पत्रस के कलाम का क्या हुआ जो उसने पेंतिकोस के दिन कहा था? समझे? नहीं, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता।
Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
नादर बरा कुर्बान हुआ, उसका बेश कीमत लहू जो अपनी कुवत कभी भी नहीं खोता जब तक कि वो खुदा की कलीसिया को रहाई देकर निजात ना बख्श दे और उसमें मजीद गुनाह ना रहने देगा।
Then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save, when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave.
फिर एक अजीम आलीशान और सुरीला गीत मैं गाऊंगा कि उसकी कुवत ने मुझे बचाया, फिर ये बेचारी तो तलाती हकलाती और झूठी जुबान गौर में खामोश हो जाएगी।
God help me to believe that and hold to it, all of us, and stand by it, because it is a gospel truth. Yes, sir.
खुदा मेरी और हम सब की मदद करे कि कलाम-ए-मुकद्दस पर ईमान रखें और इसे पकड़े रहें और इसी के जरिए खड़े रहें, क्योंकि ये अंजील की सच्चाई है। जी हाँ जनाब।
A wise man should never look at these things and know that they won't work. They never have worked.
एक अकलमंद इंसान ऐसी बातों पर कभी भी निगाह डालना नहीं चाहेगा, इसलिए कि वो जानता है कि ये चीजें काम ना करेंगी और ना ही उन्होंने कभी काम किया है।
An organized religion and an organized experience will never work in the presence of God. It's got to come unadulterated from God.
एक तंजीम का और तंजीमी मजहब का तजर्बा कभी भी खुदा की हजूरी में काम नहीं करेगा, बल्कि कलाम को बगैर दोगलेपन के खुदा की तरफ से आना ही होता है।
It has never been used by God. No time in the past did God ever use such a system.
माजी में कोई ऐसा वक्त नहीं मिलता जहां खुदा ने कभी इस जैसे निजाम को इस्तेमाल किया हो। खुदा ने इस जैसे तरीके को कभी इस्तेमाल नहीं किया।
You get members and things like that, but I mean the genuine seed of God, the blessing like fell on the day of Pentecost, It never comes by organization. It comes by birth, being born again.
लेकिन अब आप हो आप मेंबर और ऐसी ही दूसरी चीजें हासिल करते हैं, लेकिन मेरा मतलब खुदा के हकीकी बीज से है, वही बरकात जिनका नजूल पेंतिकोस के दिन हुआ था। ऐसी बरकात कभी भी तंजीम के जरिए नहीं आ सकती, लेकिन ये एक पदेश यानी नई पदेश लेने पर आती है। हम जो बुलाए गए हैं, आए इसराइल को एक मिसाल के तौर पर लेते हैं जो उन्होंने किया।
Notice they have forsaken him, their provided fountain, and have hewed themselves out cisterns.
गौर करें, वो खुदा को भूल गए जो उनका मुहैया करदा आबे हयात का चश्मा था, और उन्होंने खुद अपने लिए हौज खोद लिए।
Could you imagine a thing when a man is at an artesian well drinking and then wants to make him a cistern to drink out of it?
क्या आप एक ऐसी चीज का तसव्वुर कर सकते हैं जब एक इंसान फवारी चश्मे से पी रहा हो और फिर भी चाहता हो कि उसे एक हाउस बनाए, तो देखें क्या वो इसमें से पी सकता है?
Now that's what the prophet said. That's what the word of God said. That's what God said to the prophet.
अब यही बात नबी ने कही और यही बात खुदा के कलाम ने कही, यही बात है जो खुदा ने नबी से कही थी।
You have forsaken me and have left me the fountain of living waters and have hewed yourself out cisterns which are broken and they're leaking out.
तुमने मुझ आबे हयात के चश्मे को तरक कर दिया है और मुझे भूल गए हो, और तुमने खुद हाउस खोद लिए हैं जो कि शिकस्ता हैं और जिनमें से पानी बाहर टिपकता और रस्ता रहता है।
See something they wanted something they could control or to show what they had done. That's the folly of organized religion.
देखें, कोई ऐसी चीज जिसे लोग अपने काबू में रखना चाहते हों या दिखाना चाहते हों कि उन्होंने ये काम सरंजाम दिया है, और यही काम तंजीमी मजहब की हमाकत है।
It's always trying, they got to have something in it themselves. They got to have all these systems and societies and things, and I belong to this and I...
ये हमेशा ही कोशिश करते रहे हैं कि अपने बलबूते पर कोई चीज हासिल करें। ऐसे लोगों ने हर किस्म के निजाम और भाईचारे और ऐसी ही चीजों को हासिल कर रखा है, जैसे कि अब मैं इससे ताल्लुक रखता हूँ।
Instead of just being humble children of God, they want something that they could show themselves.
इसकी बजाय कि वो खुदा के आजीज बच्चे हों, जबकि ऐसे लोग चाहते हैं कि वो खुद अपने आप को दिखाएं।
Instead of letting God do it His way, they want to do it their way. And that's the way the systems has got the church today.
हालांकि खुदा इजाजत देता है कि कोई भी काम उसके तरीके से करें, मगर उसकी बजाय लोग अपने तरीके से करना चाहते हैं, और उसी तरीके से सारे निजाम कलीसिया में शामिल हो चुके हैं।
Not each system. One wants it this way. One wants it that way. If you're a Methodist, you must be it this way. A Baptist this way. Presbyterian, Catholic, whatever more. They got their systems.
ना के हर एक निजाम इनमें से एक चाहता है कि ये इस तरीके से हो, जबकि दूसरा ये चाहता है कि इस तरीके से हो। अगर आप एक मेथोडिस्ट हैं, तो आपको जरूर ही इस तरीके से करना चाहिए। अगर आप एक बैप्टिस्ट हैं, तो ये उस तरीके से करना चाहिए, या एक प्रेस्बिटेरियन या कैथलिक या कुछ भी हैं। इन लोगों ने अपने निजाम हासिल कर रखे हैं।
Nothing against that, but that ain't what I'm talking about. Man wants his way of doing it, and God's got his way of doing it.
मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता, लेकिन ये वो नहीं है जिसके मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि खुदा ने इसे करने के लिए अपना तरीका इख्तियार कर रखा है, जबकि इंसान चाहता है कि वो इसे अपने तरीके से सरंजाम दे।
And he said, you are holding to your way a broken cistern and won't accept my way, the way of life.
और उसने कहा कि तुमने अपने तरीके से एक शिकस्ता हौज को पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरे उस जिंदगी देने वाले तरीके को कबूल क्यों नहीं करते?
That's the same thing as it is today. It just hasn't very good.
और बिल्कुल वैसा ही तरीके का राज भी है, और इसमें जरा सा भी फर्क नहीं है।
Think how foolish of a man leaving an artesian well, a pure clean water bubbling up, and then he wanted to go to a broken cistern and he made himself.
जरा सोचें कि एक इंसान की कितनी हमाकत है कि वो एक फवारी चश्मे को छोड़ रहा है जिसके खालस और साफ पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, लेकिन वो उस शिकस्ता हाउस को चाहता है जिसे उसने खुद बनाया है। और उस हाउस को खोदा है और कूड़ा क्रिकेट के साथ जो खलियान पर होता है धोते हुए उसमें दाखिल होता है, फिर वो इसी में से पीता है, तो फिर यकीनन उस शख्स के साथ कोई ज़हनी गड़बड़ है।
And when a man will cling to an ecclesiastical conception of the Scripture instead of accepting the Holy Ghost, which vindicates the Scripture and makes it real to you, there's something spiritual wrong with that person. That's exactly right. Sure, the Holy Ghost.
और जब कोई इंसान रूहुल कुद्स को, जो कलाम को साबित करता और आपके लिए हकीकत बनाता है, कि बजाय कलीसियाई तसव्वुर के साथ लिपटा रहता है, तो उस शख्स के साथ जरूर ही रूहानी तौर पर कोई मसला है, और ये बात बिल्कुल ठीक है, यकीनन रूहुल कुद्स।
Each one has an interpretation of the Bible. What you think is right. God don't need your help. God don't need your interpretation.
जैसा कि हर एक बाइबल की अपने अपने तरीके से तफसीर करता है, आप क्या सोचते हैं? ये दुरुस्त है? खुदा को आपकी मदद की जरूरत नहीं है और ना ही खुदा को आपकी तफसीर की जरूरत है।
God's his own interpreter. God does the interpretation way he says he would do it.
क्योंकि खुदा आप अपना तर्जमान है, खुदा ही अपनी राह की खुद तर्जमानी करता है, क्योंकि वो राह है, उसने कहा वो ऐसा करेगा।
The Lord said in the beginning, let there be light, and there was light. That don't need any interpretation. That's what God did.
खुदावन ने इब्तदा में फरमाया कि रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। इस बात के लिए किसी भी तफसीर की जरूरत नहीं, यही तो है जो खुदा ने कहा।
He said, a virgin shall conceive. She did. That don't need any interpretation.
उसने कहा एक कुंवारी हमला होगी, और वो हमला हुई, उसे किसी तफसीर की जरूरत नहीं।
He said he would pour out his spirit upon all flesh. He did. It doesn't need any interpretation. God interprets his own word by vindicating it and manifesting it and proving it.
उसने कहा वो हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करेगा, तो उसने ऐसा ही किया। इस बात के लिए किसी की तफसीर की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा खुद अपने कलाम की तर्जमानी इसे साबित करते हुए और इसे जाहिर करते हुए और इसकी ताईद करते हुए करता है।
That's how a prophet was proven to be of God. He said, if there be one among you spiritual prophet, I, the Lord, will make myself known unto him in visions, speak to him through dreams, and what he says comes to pass, and fear him. But if it doesn't, don't do it.
एक नबी को किस तरह परखा जाता था कि वो खुदा की तरफ से है या कि नहीं? खुदा ने कहा था, अगर तुम में कोई एक नबी या रूहानी हो, तो मैं खुदावंद अपना आप रोया में उस पर जाहिर करूंगा और ख्वाब के जरिए उससे बात करूंगा, और जो कुछ वो कहता है अगर ऐसा वकू में होता है तो फिर उसे डरना, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मत डरना।
That's the same thing when God speaks his word and a man says the word is this and it happens that way, then it's God doing it.
और यही बात है, जब खुदा अपना कलाम फरमाता है तो आदमी कहता है कि ये कलाम है और ये इस तरह होगा, तो फिर ये काम खुदा कर रहा होता है।
But if he says it's this way and the days are gone, why he takes all the, he reaches for a hungry bread in his hand to children and take it away from them starving.
लेकिन अगर वो कहता है ये तो इस तरह है और ये दिन तो गुजर चुके हैं, क्यों ये सब लेते हो? एक भूखा उस रोटी तक पहुंचता है जो उसके हाथ में बच्चों के लिए है, और वो उनसे दूर कर लेता है और उन्हें भूखा मरने देता है।
Why would you want to drink out of a cistern when this artesian well was there?
क्यों तुम उस हौज से पीना चाहते हो जबकि ये फवारी कुआं मौजूद है?
What is a fountain of life now? What is the fountain of life? Fountain of living waters. An artesian well we would liken it to.
अब एक हयात का चश्मा क्या है? अब हयात का चश्मा या आबे हयात का चश्मा क्या है? ये एक फवारी कुआं है और हम इसका मुवाजना करेंगे।
Now, I want you to notice the difference between a cistern and a fountain of living water, artesian well, and an old broken cistern out there full of bugs, lizards, frogs, germs, what more.
अब मैं चाहता हूँ कि आप एक हाउस और एक आबे हयात के चश्मे के दरमियान जो फर्क है उस पर गौर करें। फवारी कुएं में फर्क होता है, मगर देखें, एक पुराना शिकस्ता हाउस कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, चिपकलियों, जरासीम और इसके अलावा बहुत कुछ से भरा होता है।
And here's an artesian well. Now watch this. It's self-supporting. You don't have to get any big systems to bring a lot of money into it. You don't have to join a lot of members. It supports its members of the spirit of life in them function.
अब यहाँ एक फवारी कुआं है, अब इस पर निगाह डालें। ये अपनी मदद आपके तहत बहता है। आपको इसमें कोई भी बड़ा निजाम या ज्यादा रकम लगाने की जरूरत नहीं होती, न ही आपको ज्यादा तादाद में अराकान शामिल करने की जरूरत होती है, बल्कि इसे इसी के अराकान कायम रखते हैं, इसलिए कि इसमें जिंदगी की रूह काम कर रही होती है।
Notice the water that comes from it, fresh, pure and clean. Not a cistern, something stagnant. It's been documented by 40, 50 different minds saying this is right and that's right and this conception, vote and call on and as they do and then make a denomination out of it.
ध्यान दें, जो पानी इसके जरिए आता है वो ताज़ा, खालिस और साफ सुथरा होता है, ना कि एक हाउस की तरह जिसे किसी चीज ने रोक दिया हो, जिसके मुतालिक 40 या 50 मुख्तलिफ इंसान तहरीरी राय देते हैं और कह रहे होते हैं ये तरीका दुरुस्त है और वो तरीका दुरुस्त है, ये ख्याल दुरुस्त है। तब जिसकी राय को ज्यादा तरजीह मिलती है वो उसे बुला लेते हैं और फिर उसी तरीके से करते हैं और फिर उसमें से एक तंजीम को बनाकर बाहर लाते हैं।
It's pure and clean, unadulterated word of God coming from the hand of God. It's a real artesian well.
जबकि खुदा का कलाम लाखता, साफ सुथरा और खालिस है, जो खुदा के हाथ से जारी होता है और यही एक हकीकी फवारी कुआं है।
Notice, the secret of its power is within itself. Man cannot find it. Some kind of a pressure beneath it that's a making it push up.
गौर करें, अब इसकी ताकत का भेद इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान इसे तलाश नहीं कर सकता। किसी किस्म का एक दबाव जो इसके नीचे होता है वही इसे बनाकर ऊपर धकेलता है।
I remember when I was a state game warden of Indiana, I used to go by in Harrison County a certain well, a spring, is always bubbling up.
मुझे याद है जब मैं इंडियाना में खेलों में निगरान हुआ करता था तो मैं उसमें से पानी पिया करता था, और जब मैं हैरिसन काउंटी में जाया करता था तो यहाँ एक खास किस्म का कुआं, जैसा कि एक चश्मा होता है, मैं उसमें से पानी लिया करता था और उसमें हमेशा बुलबुले उठा करते थे। अब करीबन ये बिल्कुल इस तरह लगता था जैसे कि बड़ी खुशनुमा चीज है, अगरचे उस जगह पर बर्फबारी होती थी और बर्फ जम जाती थी और ये पानी बहुत ठंडा हो जाता था, लेकिन तब भी उसमें से बुलबुले उठते थे।
For the old man-made ponds and tanks with frogs and everything was out there froze over solid.
लेकिन वही इंसानी बनाए गए तालाब और पुराने हाउस जो मेंढकों और सब कीड़ों मकोड़ों से भरे हुए थे मौजूद थे, और जब बर्फ उन पर गिरती और जम जाती तो उन पर एक ठोस तय लग जाती थी।
That goes to show that any denomination through a little lack of spirit or a little change of atmosphere will freeze over, but God's artesian well is this. He's the same yesterday, today and forever.
और ये हालत किसी भी तंजीम को नमाया करती है जिसने फिजा में थोड़ी तब्दीली कर ली हो लेकिन रूह से महरूम हो तो इसके ऊपर बर्फ की तय लग जाएगी, लेकिन खुदा का नहायत जोश मारने वाला कुआं वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है।
It keeps all the things bubbled out of it, shoved out of it, and there's nothing out of it again with it. Man, it gets into it to push it out of the way.
वो तमाम चीजों को इसमें से बाहर की तरफ धकेलता है और इसमें से बाहर को निकाल देता है, और इसमें इब्तदा ही से कुछ नहीं होता, और अगर कोई भी चीज इसमें दाखिल होती है तो ये इस तरीके से धकेलेगा कि ये बाहर निकल जाएगी।
That thing was bubbling up like that, and I said, sat down there one day, I thought, I believe I'll talk to that spring just for a moment.
वो चश्मा बिल्कुल इस तरह से बुलबुले उठा रहा था। एक दिन मैंने यूं ही कहा कि चलो यहाँ इस कुएं पर बैठ जाते हैं। तब मैंने सोचा मुझे यकीन है कि मैं कुछ लम्हों के लिए इस चश्मे से गुफ्तगू करूंगा। मैंने अपनी टोपी को सर से उतारा और मैंने कहा, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो और तुम इतने ज्यादा बुलबुले क्यों उछाल रहे हो?
Maybe it's because the deer's drink from you once in a while. If he could have spoke, he'd said no. I said maybe it's because I drink from you. No, that isn't it.
हो सकता है कि तुम इसलिए खुश हो कि कभी-कभार तुम में से हरन पानी पी लेते हो। अगर वो बोल सकता तो वो कहता नहीं। मैंने कहा हो सकता है तुम इसलिए खुश हो कि मैं तुम में से पीता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
I said, well, what's making you so pure, so clean, so what is this bubbling that makes you bubble full of joy all the time and nothing can freeze you over? You're spurting up in the air and there's nothing, clean water.
मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम इस पानी को क्यों इतना साफ और शफाफ और खालिस बना रहे हो और इसका बुलबुले उठाना क्या है जो तुम बना रहे हो और हमेशा इसे बनाने में ही खुश रहते हो, और तुम पर क्यों कुछ भी जम नहीं सकता और तुम पानी को हवा में उछाल रहे हो तो भी इसमें कोई चीज नहीं है और पानी साफ और शफाफ है।
If it could have spoke to me, you know what that well would have said? It said, Brother Branham, it isn't me a bubbling. It's something behind me bubbling me. And that's the way it is. That's a poor word, but you know what I mean.
अगर वो बोल सकता तो आप जानते हैं उस कुएं ने मुझसे कहा होता, उसने मुझसे कहा होता, भाई ब्रैनम, मैं नहीं जानता हूँ जो बुलबुले उछाल रहा हूँ, ये कोई और चीज है जो मेरे पीछे है, जो मुझे ऊपर उछाल रही है, और ये इसी तरीके से है। ये बात बड़ी हकीर सी लगती है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है।
A well of water within you bubbling up into everlasting life. See, there's something about it that you have nothing to do with.
और यही तरीका है जब आप नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा करते हैं, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। ये पानी का एक वो चश्मा है जो आपके अंदर है और उससे हमेशा की जिंदगी के बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं। देखें उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है, हालांकि आपको उसके साथ कुछ भी नहीं करना है।
The man-made tanks may freeze them, begging for revival and everything, but a man that's under that fountain, living in that fountain, it's day and night.
जबकि इंसान के बनाए गए हौज मंजमंद हो जाते हैं और फिर उनकी बहाली के लिए और बहुत सारी चीजें मांग रहे होते हैं, लेकिन जो आदमी उस चश्मे के नीचे है वो दिन और रात उसी चश्मा से जिंदा रहता है।
No, you don't have to wait on local rains and local revivals. You are full of it. I'll give unto him a fountain of life, any bubbling up.
आपको वक्ती बारिश और वक्ती बेदारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि आप उससे लबरेज हैं। मैं हयात का एक चश्मा जारी करूंगा जो तुझ में से बुलबुले उछालेगा।
Something in it that's fresh every day, pure and clean. It's an unadulterated word of God in your heart and mouth, vindicating itself, speaking for itself.
और उसमें ये खूबी है कि वो हर दिन ताजा और साफ और शफाफ होगा, और ये खुदा का लाखता कलाम है जो आपके दिल और मुंह में है, जो उसकी शनाख्त के लिए और उसके लिए बोल रहा है।
I don't care where it's raining, where it's snowing, what kind of weather it is, you're still happy because the Holy Spirit is in there bubbling up. It's a hidden power.
मुझे परवाह नहीं कि मौसम बरसात है या बर्फबारी हो रही है या किस किस्म का मौसम है, लेकिन आप अब भी खुशकिस्मत हैं क्योंकि रूह उस जगह बुलबुले उछाल रहा है और ये पोशीदा कुवत है।
Notice, oh, it secretes within it. It gives of itself freely to whomsoever will drink and use of its substance.
गौर करें, हो ये पोशीदा कुवत है जो आपके अंदर है, ये खुद को मुफ्त देता है ताकि जो कोई इसमें से पिएगा वो प्यासा ना होगा।
Now you don't pick out, say, well, I'm just have to go to the Methodist church because I'm a Methodist for a revival.
आप इसे निकाल कर ये नहीं कह सकते, चलो ठीक है, अब बेदारी के लिए मुझे मेथोडिस्ट गिरजे में जाना है इसलिए कि मैं एक मेथोडिस्ट हूँ।
I'll have to go over here, but if I have to go to a Pentecostal because I'm a Pentecostal revivalist.
मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन बिलफर्ज, मुझे एक पेंटिकोस्टल गिरजे जाना है क्योंकि मैं एक पेंटिकोस्टल बेदारी लाने वाला हूँ।
I'm telling you, when you got that well of water springing up, that fountain when you're drinking, but there's no difference you give to anything that comes by.
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस कुएं का पानी जो फवारे की तरह ऊपर आ रहा है, यानी इस चश्मे का पानी हासिल कर लिया है और इसी से पी रहे हैं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें से आने वाली चीज किसी को भी दे सकते हैं।
You're willing to give a hope of life to a Catholic, to a Protestant, to a Jew, to a atheist or whatever it is, you're really, really got something in you that's doing it.
और आप खुशी से जिंदगी की उम्मीद एक कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट, एक यहूदी, एक दहरिया या ये जो कोई भी हो दे सकते हैं। आपने वाकई हकीकत में किसी चीज को हासिल कर लिया है जो ये काम जारी रखे हुए है।
You notice another thing about it. You don't have to pump it. You don't have to pull it. You pump it up.
और क्या आपने इसकी दूसरी चीज पर ध्यान दिया? आपको इसे पंप करना नहीं पड़ता और न ही इसे खींचकर ऊपर पंप करना पड़ता है।
I've seen so much of that it makes me sick. Pumping up something, playing a bunch of music and jumping up and down.
मैंने इसे बहुत दफा चलाया है, यहाँ तक कि ये मुझे थका देता था। किसी चीज को ऊपर पंप करना, जैसे म्यूजिक बजाने वाला एक ग्रुप और ऊपर नीचे छलांग लगाना।
Or a great bunch of literature out in the town, a great big sign, the man of the hour. There's only one man of the hour, that's Jesus Christ, who's the same yesterday, today.
या कस्बे में लिटरेचर का एक बहुत बड़ा ग्रुप और अजीम बड़े निशानात हों, इस जमाने का आदम सिर्फ एक ही है जो इस जमाने का आदम है, और वो यीशु मसीह है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और सिर्फ एक ही पैगंबर है जो खुदा की तरफ से है, और वो यीशु मसीह है। जी हाँ जनाब, आपको उसे पंप करके ऊपर नहीं करना पड़ता या खींच कर नीचे नहीं करना पड़ता, और ना ही आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, बल्कि आप उसे मुफ्त हासिल करते हैं। आमीन।
I am the fountain of living water. You left me to go and make yourself some tanks.
मैं ही आबे हयात का चश्मा हूँ जिसे तुमने तरक कर दिया और खुद जाकर अपने लिए हौज बना लिए।
Now you don't have to pump it, pull it, join it, dig it, nothing else. You just have to take of it freely.
अब आपको उसे पंप नहीं करना, ना खींचना है, ना ही आपको शामिल होना है, और ना ही खोदना है, बल्कि कुछ भी नहीं करना, बल्कि आपको उसे मुफ्त लेना है।
You don't need any man-made theology for a strainer rag either to tell you what goes in, what does not.
आपको किसी भी इंसान की खुद साख्ता इल्मे लाहियात की खस्ता छलने की जरूरत नहीं, खा वो आपको बताने की कोशिश करें इसके जरिए क्या क्या किया गया या इसने क्या काम सर अंजाम दिया। आपको ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं।
Some man-made theology, some educational system, self-righteous religion in your
इंसान के बनाए गए इल्मे इलाहियात के साथ कुछ तंजीमी निजाम जिसे इसमें खुद साख्ता मुत्तकई मजहब या इसमें कुछ मजहबी हाउस का निजाम, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं, इसे वहीं रहने दें।
You put a rag on that foot from up in the air. It don't have nothing to do with it. It's self-supporting. It's the power of God springing up into life.
आप उस पर किसी चीज का एक टुकड़ा रख दें, ये फौरन उसे ऊपर हवा में फेंक देगा, क्योंकि उसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये खुद अपने आप को कायम रखता है, ये खुदा की कुदरत है जो जिंदगी में उछल रही है।
Why would a man leave a thing like that to join into a system is more than what I could say. Don't need any string or eggs. Don't need it.
क्यों एक इंसान उस जैसी चीज को छोड़ना और एक निजाम में शामिल होना चाहेगा, ये चश्मा उससे बढ़कर है जिसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसे कभी भी छलनी के टुकड़े की जरूरत नहीं, उसे इसकी जरूरत नहीं है।
It does not need to be the, does not need to depend on local rains for its filling. It's full all the time. Amen.
उसे ऐसा होने की जरूरत नहीं, और ना ही उसे भरने के लिए वक्ती बारिश की जरूरत है, इसलिए कि यह हमेशा ही लबरेज रहता है। आमीन। एक आदमी जिसे मैंने ये कहते हुए सुना, मैं आज भी अफसुर्दगी की हालत में हूँ, हो मेरे खुदाया।
Oh, I'm glad to be living in the presence of God. Whether things are going right or not right, He's my life. Amen. He's our life. He's the life, the abundant life. Yes, sir.
चाहे हालात दुरुस्त सिमत में जा रहे हों या गलत सिमत में हो, पर मेरे लिए खुदा की कुर्बत में होकर जिंदगी गुजारना खुशी की बात है, इसलिए कि वो मेरी जिंदगी है। आमीन। वो हमारी जिंदगी है, वो जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी है। जी हाँ जनाब।
Look what it does for us. It's a power and purity is within itself. It needs no priming from the cistern or any other system.
और देखें कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया। उसकी कुदरत और पाकीजगी उसके अंदर है, और उसे किसी भी हाउस या किसी दूसरे निजाम की तहरीक की जरूरत नहीं है।
Somebody say, well, what's your fellowship card? Let's see if you're a good Baptist. I'll see if you got a card.
अगर कोई कहता है, अच्छा तो आप किसके साथ रफाकत रखते हैं, आए जरा देखते हैं, अगर आप एक अच्छे बैप्टिस्ट हैं, मैं आपकी रफाकत को देखूंगा।
A good Pentecostal, if you're oneness, two-ness, three-ness, or whatever more. See, it doesn't need any priming. It's always a going. Yeah.
आप एक अच्छे पेंटिकॉस्टल वननेस टूनेस थ्रीनेस वाले हैं या आप जो कुछ भी हैं, लेकिन देखें उसे किसी तहरीक की जरूरत नहीं है, वो हमेशा एक जैसा जारी और सारी है। जी हाँ।
You know, I used to have this old cistern. I had to pour water down there and prime and prime and prime this old sucker pump to get it out of there.
आपको मालूम है कि मैं भी एक पुराने हाउस को इस्तेमाल करता था, और मुझे एक नलके के साथ उस हाउस से पानी भरना पड़ता था, और फिर पानी नीचे नीचे हाउस की तह की तरफ चला जाता था।
you know,
लेकिन फिर भी मैं उसमें से मजीद पानी नलके के जरिए खींचता था, और आप जानते हैं फिर नीचे वाले उस पानी में कीड़े मकोड़ों और ऐसी ही दूसरी चीजों के गुच्छे होते थे जो नलके को चलाने के साथ ही बाहर निकल आते थे, और तकरीबन ऐसा ही इन तंजीमी बेदारियों के साथ है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि यहाँ लहू से भरा हुआ एक चश्मा है जहाँ गुनाहगार उस लहू में गोता लगाते हैं। आपको कलीसिया का मेंबर नहीं बनना, बल्कि जब आप उनमें से निकलकर उस चश्मे के पास आते हैं तो आप मसीही हैं।
Why would you leave the fountain of living waters to drink at such a cesspool as that?
आप क्यों आबे हयात के चश्मा को तरक करके उस गंदे हाउस से पिएंगे?
No pumping up. This power is within itself. It needs no priming. Yes, sir. For itself, its own life is in itself.
चश्मे को पंप नहीं करना पड़ता, उसकी ताकत उसके अंदर है और ना ही उसे तहरीक की जरूरत है। जी हाँ जनाब, क्योंकि वो खुद है, उसकी अपनी जिंदगी उसमें है।
That's why the seed of God is in a man's heart. The life of God is in the individual, not in the church, in you. It's in you. You're the one that has the germ of life in you.
और यही वो तरीका है जिससे खुदा का बीज एक इंसान के दिल में आता है। खुदा की जिंदगी इंफरादी तौर पर है, ना के कलीसियाई तौर पर। ये आप में है और आप ही वो हैं जिसमें जिंदगी का जरसुमा है।
Just one taste of it is convincing to all kinds of clergymen. Ask the Catholic priest, ask the Baptist, whatever it is.
उस चश्मे का सिर्फ एक ही जैका है जिससे वो हर किस्म के राहबों को माइल कर रहा है, चाहे कैथोलिक मनात या बैप्टिस्ट से पूछ लें या ये जो कोई भी हैं।
Just one taste of this great fresh artesian water. I'm telling you, it's convincing that it's the truth.
मैं आपको बता रहा हूँ कि उस जुम्बश करने वाले चश्मे का पानी नहायत ताजा है और उसका जायका सिर्फ एक ही है और वो उसी से माइल कर रहा है। ये सच्चाई है हर तरह से।
Your hungry soul, anyhow, it's convincing to the thirster, anyhow. Now, if you're not thirsting, this little Baptist, he wasn't thirsting to begin with, but when he got thirsty, the water tasted awful good.
अगर आपकी जान प्यासी है तो वो प्यासों ही को माइल कर रहा है। अब अगर आपको प्यास नहीं लग रही, जैसे ये बैप्टिस्ट, इसे इब्तदा से प्यास नहीं लगी थी, लेकिन जब इसे प्यास लगी तो फिर पानी का जायका खूब जाहो जलाल वाला लगा।
That's right, but you've got the thirst, the blessed thirst that Jesus called out. Blessed are you when you do hunger and thirst after righteousness, for you shall be filled.
ये बात दुरुस्त है, मगर आप उस बाप बरकत प्यास के लिए प्यासे हैं जिसके मुतालिक यीशु ने कहा था, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। दोस्तों, यीशु ने यही बात कही थी। जी हाँ जनाब, ये प्यासों के लिए बाप बरकत चश्मा है। आमीन। क्यों कोई उस चश्मे को एक दलदल वाले हाउस से बदलना चाहेगा?
How would you like to swap an artesian well for a swamp water full of bugs and contaminations of all kinds of man-made theories which God said that adding one to his word or taking one of his words away, his part would be taken off of the book of life?
आप कैसे एक फवारी कुएं के पानी को एक दलदल वाले पानी से बदलना पसंद करेंगे जबकि वो कीड़े मकोड़ों और गलाजत से और इंसान की बनाई गई हर किस्म की तालीमात से भरा हुआ है, जबकि खुदा ने कहा जो कोई उसमें एक लफ्ज बढ़ाएगा या उसमें से एक लफ्ज घटाएगा उसका हिस्सा किताब हयात से काट डाला जाएगा।
And when God promised that he'd vindicate this word in every generation. For the promises to you and your children to them for as many as the Lord our God shall call.
और जब खुदा ने ये वादा कर रखा है तो फिर वो इस कलाम को हर जमाने में साबित करेगा, क्योंकि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से है जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा।
Why would you pump on some systematic pump that's been contaminated for years from some old manna?
क्यों आप उन रस्मी पंपों से पंप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अरसा दराज से गलाजत और बसीदा मन से भरे हुए हैं?
Maybe the man was all right. Nothing against it in the days of Martin Luther, in the days of this, the days of that, and the other reformers. Nothing about it. But that's manna that fell a long time ago.
लेकिन शायद ये मन मार्टिन लूथर के दिनों में ठीक था। मेरे पास इसके खिलाफ कुछ नहीं। हो सकता है ये किसी दूसरे सलाहकार या इस या उस जमाने में ठीक था, और ना ही मैं इसके खिलाफ कुछ कहता हूँ, लेकिन उस मन को बरसे हुए अरसा बीत गया है। अगर हम बाइबल में ध्यान दें तो इसराइली हर रोज उस मन को उठाते थे और दूसरे दिन उन्हें नया लेना पड़ता था।
It cannot rot without breaking down. It has to have bacteria in it or something to make it rot. We know that, so.
और उस मन को हासिल करने के बाद अगर ये पुराना हो जाता था तो ये गल सड़ जाता था, और जब तक वो खराब ना हो जाता वो गल सड़ नहीं सकता था। इसके बाद उसमें बैक्टीरिया या कुछ और ऐसी चीजें उसको गलने सड़ने की नौबत तक ले आती थी। बस हम इस बात से वाकिफ हैं।
And so is the system. After it lays out from one great revival to another, it gets contaminated. It gets full of bugs, like a sister full of wiggle tails, as we used to call it. Little old bugs that wiggle in there.
बस ये निजाम है, और इसके राज होने से एक से दूसरी बड़ी बेदारी शुरू हुई, लेकिन इस तौर तरीके ने अपने अंदर गलाजत और कीड़े मकोड़े हासिल कर लिए, जैसे एक हाउस दुमदार कीड़े और टेढ़े मेढ़े कीड़े मकोड़ों से भरा होता है, और ये छोटे पुराने कीड़े मकोड़े उसमें टेढ़े मेढ़े चलते फिरते हैं, और हम इसे यूं ही कहा करते हैं।
And that's what's the matter. So many people's experience today, they're just full of wiggle tails. Wiggling from one to the other, telling tales that ain't got no truth in it at all.
और यही मसला आज के बहुत सारे लोगों के तजर्बे के साथ है, क्योंकि ये उसी तरह की टेढ़ी मेढ़ी चालों के साथ भरे हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी एक के पास और फिर कभी दूसरे की तरफ टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए जाते हैं और किसे कहानियां सुनाते रहते हैं जिनसे कभी भी सच्चाई को हासिल नहीं किया जा सकता।
That's right, wiggling out of one into another. I was a Methodist, I joined a Baptist, I was a Catholic, I went to be this, I went to be that. It's just wiggle tails. Oh, forget the whole thing and come to the fountain. Hey, man, the artesian well, the ever living presence of Christ.
और ये बात एकदम ठीक है। ऐसे लोग टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते और एक दूसरे में दाखिल हो जाते हैं, जैसे कि मैं एक मेथोडिस्ट था, मैं बैप्टिस्ट के साथ खिदमत करता था, मैं कैथलिक था, मैं इसमें जाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगा, ये सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी चाल है। हो ऐसी तमाम चीजों को भूल जाएं और उस चश्मे के पास आ जाएं, आमीन, उस झुंबश करने वाले चश्मे यानी मसीह की जिंदा हजूरी में आ जाएं।
I believe him to be the inexhaustible fountain of life. More you get from him, the fresher it gets, and the colder it gets, and the better it gets, and the sweeter it tastes.
क्योंकि मेरा ईमान है कि वो कभी ना कम कभी ना खाली होने वाला चश्मा है। आप जितना चाहें उससे हासिल कर सकते हैं, जितना ताजा चाहें, जितना ठंडा चाहें, जितना बेहतरीन चाहें, जितना मीठा चाहें, उसका जायका हासिल कर सकते हैं।
I've been serving you now for 33 years, and each day grows still sweeter than it was the day before. He said, you would never thirst if we drank in this water. Notice how great it is.
मैं उसे 33 सालों से पेश कर रहा हूँ, और हर दिन वो गुजरे दिन की निस्बत ज्यादा मीठा होता है, और मैं कभी भी, क्योंकि उसने कहा है अगर तुम उस पानी में से पियोगे तो कभी प्यासे ना होगे। ध्यान दीजिए ये कैसा आलीशान है।
Oh, Israel did as many do the day. They left the fountain of living waters to go dig themselves cisterns.
Oh, जैसे इसराइल ने किया वैसे ही आज बहुत से लोग कर रहे हैं। उन्होंने आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और वो उन हौजों में जा रहे थे जिन्हें उन्होंने खुद खोदा था।
Now, speaking of grace just for a moment, what the grace of God.
अब आइए जरा एक लम्हा के लिए फजल पर बात करते हैं कि खुदा का फजल क्या है।
We got laws and bylaws, and if you don't measure up to this standard, I got a religious measuring stick. If you don't measure just up to that, you've got the, you can't come in, and so forth.
और हमने हुक्म पर हुक्म पाया है, और अगर तुम उस मेयार पर पूरे नहीं उतरते, मैंने एक मजहबी पैमाइशी छड़ी हासिल की है कि अगर तुम उस मेयार पर पूरे नहीं उतरते जो कि आपके पास है तो आप अंदर नहीं आ सकते, वगैरह वगैरह।
But God saves us by grace, not by measuring stick.
लेकिन खुदा ने हमें फजल के वसीला से बचाया है, ना कि एक पैमाइशी छड़ी के वसीला से, समझे?
But God, speaking of grace, now just how this happened to take place, drinking from him, from this measuring stick.
लेकिन खुदा अब फजल में बोल रहा है, अब कैसे ये मुमकिन हो सकता है सिर्फ उसमें से पानी पीने से या पैमाइशी छड़ी के जरिए।
murmuring Israel. Watch, he said, and I will visit you again. Notice in the scripture, notice he's going to try them to visit them again.
बुड़बड़ाना, इसराइली बुड़बड़ा रहे थे, गौर करें। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। कलाम पर ध्यान दें, गौर करें, वो उनकी आजमाइश करने जा रहा है ताकि उन लोगों के पास दोबारा जाए।
Murmuring Israel at the Red Sea was invited to follow him through the stagnated Egyptian's water to be a free people.
बहरे कुलजम पर इसराइली बुड़बड़ा रहे थे जबकि वो मिस्र के बेहिस्सो हरकत पानी में से खुदा की पैरवी करने के लिए बुलाए गए थे ताकि आजाद लोग बन जाएं।
They was a slave. They was invited to come over to be a free people with him. Come out through the Dead Sea. The Red Sea, come out through that to go into a wilderness to bring a separation between them and the impersonators, trying to impersonate it without circumcision.
क्योंकि वो गुलाम थे, वो बुलाए गए थे, उसके वसीला से आजाद लोग बन जाएं। वो बहरे मुर्दार से बहरे मुर्दार बल्कि बहरे कुलजम से वो गुजर के बियाबान में आए ताकि उनके दरमियान से जो उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को उन नामख्तूनों से अलग कर लें।
Oh, that's what caused the trouble. Every one of them perished right in the sea. Pharaoh and his army.
हो, और यही बात परेशानी का बाइस बनी थी। उन लोगों में से हर एक वहाँ फराउन और उसकी फौज समेत ठीक बहरे कुलजम में हलाक हो गए।
They seen human beings walking by supernatural power. So they come back around and tried to impersonate that without being included in the blessing. And when they did, they perished. It's carnal comparison.
उन्होंने देखा था कि ये लोग जो के इंसान हैं, एक माफूकल फितरत कुदरत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो लोग बनी इसराइल के पीछे बगैर उस बरकत के आए जो बनी इसराइल के पास थी और उनकी नकल करने की कोशिश की, और जब उन्होंने इस तरह का काम किया तो बहरे कुलजम में हलाक हो गए, और ये एक दुनियावी मुकाबलाबाजी थी।
A man that tries to do that, try to impersonate something, then he is making a carnal comparison of a real Christian.
एक इंसान जो यही काम और ऐसी ही बातों की नकल करने की कोशिश करता है तो फिर वो एक हकीकी मसीही के साथ एक दुनियावी मुकाबला करने की कोशिश करता है।
My Indian brother there knows that come up around Bombay and you see the people there, the Hindus and so forth, laying on spikes and upon walking on glass and walking in fire to show what they can do and things like.
मेरे इंडियन भाई वहाँ इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन जब आप बम्बई आए तो आप वहाँ लोगों को देखेंगे कि कैसे हिंदू और दूसरे लोग तेज नोकदार किलों के ऊपर और टूटे हुए शीशे के ऊपर और आग के ऊपर चलते हैं ताकि दिखा सके कि वो ऐसे काम और इसी तरह की बहुत सी हरकत कर सकते हैं।
That's carnal impersonations of some man back in the jungle there doing that to sacrifice for his God.
ये एक दुनियावी नकल करने वाला है, जैसे कोई आदमी पीछे जंगल में अपने देवता के लिए कुर्बानी चढ़ा रहा हो।
We find that amongst all religious life, carnal impersonations, somebody trying to be like the other.
इसी तरह हम तमाम मजहबी जिंदगियों में दुनियावी नकल करने वाले पाते हैं। कोई भी शख्स कोशिश करता है कि दूसरे की मानिंद हो जाए।
There's only one example you're to be like. That's like Jesus Christ, who was the Word. And then when the Word of God comes to you, it'll be the same way.
सिर्फ वाहिद एक ही मिसाल है जिसकी मानिंद आपको होना है, और वो यीशु मसीह है जो के कलाम है। और फिर जब खुदा का कलाम आपके पास आता है तो उसे बिल्कुल वैसा ही होना है।
But God led them right on to the promised land anyhow.
लेकिन खुदा ने उन लोगों की हर तरह से मौजूदा सरजमीन तक रहनुमाई की।
They found also every tank when they started through the wilderness in their journey. Now, after they had separated, they found out that every tank was dry to them.
इसलिए जब ये लोग मिस्रियों से जुदा हो गए थे तो उन्होंने अपने सफर को बियाबान के जरिए शुरू किया, तो उन लोगों ने हर हाउस को तलाश किया, लेकिन हर एक हाउस जो उन्होंने तलाश किया वो उन लोगों के लिए खुश्क हो चुका था।
And you'll find the same thing, brother, when you start this journey to the promised land. You'll find doors closed.
भाइयों, जब आप भी इस सफर को मौजूदा सरजमीन के लिए शुरू करें तो ऐसी बहुत सारी चीजों को पाएंगे, आप दरवाजों को बंद पाएंगे।
Like that little preacher said, an Anglican or whatever he was, and the first thing you know, his church turned him out.
बिल्कुल जैसे एक बेचारे खादम ने कहा, जो कि एक एंग्लिकन या जो कोई भी था, और पहली बात जो हुई आप जानते हैं कि उसे अपने चर्च वालों ने बाहर निकाल दिया। देखें, इसलिए कि उस खादम ने रूह कुछ को हासिल कर लिया था, बस इसी वजह से उसे खारिज कर दिया गया। और मिसाल के तौर पर जब इसराइल ने मौदा सरजमीन के लिए सफर का आगाज किया तो उन्होंने भी ऐसी ही चीज को पाया, सारे हौज खुश्क हो गए थे। उस सफर में उन्हें खुदा के मौदा कलाम की ताबेदारी करनी थी। जी हाँ, इसलिए उस सफर में उन लोगों ने जितने भी हौज तलाश किए वो सब खुश्क हो चुके थे।
Now, they found the tanks could not be depended on for the journey.
और अब उन्होंने सफर के दौरान जो हौज तलाश किए उन पर तकिया नहीं किया जा सकता था।
And if you're going to journey in obedience to the word of God and try to join this and join that, you're going to find out there ain't a tank in the world that will support it. Amen. Not at all.
अब अगर आप खुदा के कलाम की ताबेदारी के सफर में जा रहे हैं और आप कोशिश करते हैं कि इस या उससे समझौता कर लें, लेकिन आप इस सफर को तय करते हुए दुनिया में कोई ऐसा हौज नहीं पा सकते जो कलाम को सहारा देता होगा, कोई भी ऐसा नहीं है।
You are an individual. God leads you just the way He wants to lead you. Then we have found the same thing today, and all tanks are dried up.
सिर्फ आप ही एक इंफरादी तौर पर हैं। सिर्फ खुदा ही जिस तरीके से चाहता है वो आपकी रहनुमाई करता है। तब हम आज भी ऐसी ही चीज को पाते हैं, इसलिए कि तमाम हाउस खुश्क हो चुके हैं।
But the promises are always true to God who will keep his promise to his people. He promised to supply all they had need of, so he did that.
लेकिन खुदा अपने वादे को अपने लोगों के साथ पूरा करता है, क्योंकि उसके वादे हमेशा सच्चे हैं। उसने वादा किया कि उनकी कुछ भी जरूरत हो वो पूरी करेगा, बस उसने ऐसा ही किया।
In the midst of the empty dry tanks, just think of it, and complaining Israel in the desert in their journey.
लेकिन उस बियाबान के दरमियान में खाली और खुश्क हौज थे। जरा उनके मुतालिक ध्यान दें और अपने उस बियाबानी सफर में सारे इसराइली शिकायत कर रहे थे।
He called his servant leader, the prophet Moses, out to one side and opened up a fountain Amen. Of living water Amen. By a smitten rock. So his believing children would not perish.
उसने अपने खादम यानी अपने नबी मूसा को एक तरफ बुलाया जो कि उनका रहनुमा था, और मूसा के चट्टान पर लाठी मारने से उस चट्टान से आबे हयात का चश्मा जारी हो गया ताकि उसके ईमान रखने वाले बच्चे हलाक न हो जाएं।
In this day, that speaks of grace to me. We are undeserving. The way that we've done, the way that we've lived, we're undeserving.
ये फजल ही है जो इस घड़ी मुझसे मुखातिब है। हम इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि जो राह हमने इख्तियार कर ली और जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारते हैं हम उसके लायक नहीं हैं।
But God, in this day, like right here this morning, look, the Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, and all.
लेकिन खुदा आज सुबह ठीक यहाँ इस घड़ी भी आप मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन कैथोलिक और जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब पर निगाह रखे हुए हैं। इसलिए तो उसने आपके लिए एक चश्मा जारी कर रखा है। अब्रानियों 13 इस बात का सबूत है कि वो कल आज बल्कि अब तक यक्सा है।
So, it makes true John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life.
बस ये बात इसे जो यूहन्ना 3:16 में है हकीकत बनाती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
And it was lifted up for a compound reason because the people were murmuring and sinning and they were snake bitten and they were dying and for their forgiveness of their sins and the healing of their sickness.
क्योंकि लोग बुड़बड़ा रहे और गुनाह कर रहे थे और सांप उनको डस रहे थे और वो मर रहे थे, इसलिए उनके लिए और उनके गुनाहों की माफी के लिए और उनकी शिफा के लिए उसे ऊंचे पर चढ़ाया गया।
And that's the same fountain that's open to us today for our salvation and for our healing, physical healing. For He's the same yesterday, today, forever.
और बिल्कुल ऐसा ही चश्मा आज हमारी निजात اور شفا بلکہ جسمانی شفا کے لیے بھی جاری ہے، کیونکہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔
And when the rock that was smitten by the promised word of God had commanded, it was given forth gushers of pure clean water, not stagnated, not contaminated, but God's own presence, pure water, and saved all the drink.
کیونکہ جب اس چٹان کو خدا کے معودہ کلام کے ذریعے مار کر حکم دیا گیا تو اس چٹان سے شدت کے ساتھ صاف و شفاف پانی جاری ہو گیا، جو نہ تو بے حص و حرکت اور نہ ہی آلودہ تھا، بلکہ خود خدا کی اپنی حضوری تھی، اور اس خالص پانی نے سب کی پیاس بجھائی اور وہ آسودہ
ہوئے۔
اب ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ سچ ہے، اور ہم اس کو پرانے عہد نامے میں نمونے کے طور پر پڑھتے ہیں۔
Now, you did not have to pull it, pump it, join it, go into the seminary to learn how to use it.
اب آپ کو اسے کھینچنا، پمپ کرنا یا اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی سیمینری میں جا کے سیکھنا پڑتا ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔
They'll tell you how to use it there, see. Oh, well, you, if you have received the Holy Spirit, we believe that, but so we, you do it this way.
وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ کہیں گے، دیکھیں، ہو ٹھیک ہے، اگر تم نے روح القدس کو حاصل کر لیا ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔
But you see, there's no control of it. You don't use the Holy Spirit, the Holy Spirit uses you. See, you're not to use the Holy Spirit. The Holy Spirit got you.
لیکن آپ دیکھیں کہ اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، آپ روح القدس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ دیکھیں روح القدس آپ کو استعمال کرتا ہے۔ غور کریں کہ آپ روح القدس کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ روح القدس نے آپ کو لیا ہے۔
A gift is not something you take like a knife and sharpen a pencil with it. It's yielding yourself to God and getting yourself out of the way so the Holy Spirit can use you.
نعمت کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک چھری کی طرح آپ لیں اور پھر اس کے ساتھ ایک پینسل کو تراش لیں، بلکہ یہ خود خدا کے حوالے کر دینا ہے اور خود کو راستے سے ہٹا لینا ہے تاکہ روح القدس آپ کو استعمال کر سکے۔
Notice, they never had to pump it or pull it, or they never had to ask, now, how do we use this water? Because they know how to use it, they were thirsty. They know what to do with it.
دھیان دیجئے کہ انہیں نہ تو کبھی اسے کھینچنا اور نہ ہی کبھی پمپ کرنا پڑا تھا، اور نہ ہی انہیں کبھی پوچھنا پڑا تھا کہ ہم اس پانی کو کیسے استعمال کریں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سب پیاسے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
And so is a man or a woman, regardless of what creed or denomination he belongs to.
بس اسی طرح ایک مرد یا عورت ہے، لیکن اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس تنظیم یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔
If he's thirsting for God, he don't have to run back to seminary like this Anglican brother did or British brother last night. Have to go back and consult how to the Anglican church, how I must use this great gift he's got speaking in tongues and how I must do this. They kick him out to begin with. See?
اگر وہ خدا کی پیاس رکھتا ہے تو پھر اس شخص کو واپس سیمینری نہیں جانا پڑتا، بالکل گزشتہ رات جیسے اس برٹش اینگلیکن بھائی نے کیا۔ کیسے وہ واپس اینگلیکن گرجے میں جا کر بات چیت کرتا، کیونکہ جو عظیم نعمت اس کے پاس غیر زبانوں میں بولنے کی تھی وہ اسے کیسے استعمال کرتا، کیونکہ وہ تو اسے شروع کرنے سے پہلے ہی لات مار کر باہر نکال دیتے، سمجھے؟
He was thirsty, so God just filled him. That's all there is to it. It's thirsting and then he just filled.
وہ پیاسا تھا، بس خدا نے اسے لبریز کر دیا۔ بس ایسا ہی سب کچھ ہے، اگر پیاس ہے تو پھر خدا لبریز کرتا ہے۔
You don't have to have any control. Somebody tell you what to do with it. God leads each individual in the way he wants you to do.
اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس نعمت کے ساتھ کیا کرنا ہے، مگر آپ کو اس پر کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، بلکہ خدا ہر راہ میں انفرادی طور پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں۔
You are an individual yourself. You are a part of God. Nobody can take your place.
کیونکہ آپ خود انفرادی طور پر اکیلے ہیں، آپ خدا کا ایک حصہ ہیں اور کوئی بھی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔
And there's no way I have to go to somebody and say, that I have to do this with it or I have to do that with it. No, sir. God uses it the way that he wants to. When you're thirsty, you know enough to drink.
اور کوئی راستہ نہیں کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں اور پھر کہیں مجھے تو اس کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا، یا مجھے تو اس کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا، نہیں جناب، بلکہ خدا جس طریقے سے چاہتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے، اور جب آپ کو پیاس لگے تو پھر آپ کو علم ہو کہ یہ پینے کو کافی ہے۔ اور اگر آج صبح آپ اس کے لیے پیاسے ہیں تو اس میں سے پئیں، بس یہی آپ کو کرنا ہے۔ کیونکہ خدا نے آپ کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک راستہ مہیا کر رکھا ہے تاکہ سارے پیاسے بچے اس میں سے مفت
پئیں۔
اور خدا نے ہر ایک مرد اور عورت کے لیے جو بھوکا اور پیاسا ہے ایک راستہ مہیا کر رکھا ہے۔ شاید یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی کبھی پیاس نہ بجھی ہو، اور ایسے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پیاس بجھانے کے لیے کنارے پر ہوں۔
These people here sitting here are church members. You want to do right. But you're drinking from a tank. They'll never tell you these truths.
اور یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اراکینے کلیسیا ہوں، اور آپ چاہتے ہوں کہ ٹھیک کام سر انجام دیں، لیکن آپ ایک ہاؤس سے لے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کبھی بھی آپ کو سچائیاں نہیں بتائیں گے۔
The only thing to come is take the promise of God and come to that fountain. Then he'll quench the thirst. He that drinks from this fountain shall never thirst again.
آپ کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ خدا کے وعدے کو لیں اور اس چشمے پر آ جائیں، تب وہ آپ کی پیاس بجھائے گا۔ وہ جو اس چشمے سے پیتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
Notice now how he liberated is once you receive this water by grace and not by a system or cistern of education. He vindicates his word is a life-giving resource.
اب غور کریں کیسے اس نے اپنے لوگوں کو آزاد کیا جنہوں نے اس پانی کو فضل کے وسیلہ قبول کیا، نہ کہ ایک تنظیمی نظام یا ایک تعلیمی ہاؤس کے وسیلہ۔ اس نے اپنے کلام کو ثابت کیا کہ وہی زندگی دینے کا وسیلہ ہے۔
How many in your knows that you receive life when you've taken that word in his water? Just you know that you receive life.
کتنے لوگ یہاں اس بات سے واقف ہیں کہ جب آپ نے اس کے کلام اور جل کو حاصل کیا تو آپ نے زندگی کو حاصل کیا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ نے زندگی کو حاصل کر لیا؟
Let's take just another example or two, and then we'll close just in a moment. I must have that button somewhere, but notice, I just keep talking, but I don't mean to do it.
اب میں کچھ لمحوں میں پیغام ختم کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پر آئیے ہم ایک یا دو اور باتیں زیر غور لاتے ہیں۔ میرے پاس وہ بٹن کہیں ضرور ہونا چاہیے، لیکن اب غور کریں، میرا ایسا مطلب نہیں کہ میں نے بٹن منہ میں رکھا ہوا ہے، لیکن میں اس بات کو جاری رکھوں گا۔
Look, let's take for an example just a couple people. Let's take the woman at Jacob's sister, a dug well.
آئیے ہم ایک اور مثال لیتے ہیں اور اس میں دو مختلف لوگوں پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ آئیں اس عورت کو لیتے ہیں جو یعقوب کے ہاؤس یعنی اس کھودے ہوئے کنویں پر موجود تھی۔
There she was sitting there. That's all the woman knows. Was this cistern where she came to get water.
اور وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ عورت بس اسی کنویں کے متعلق جانتی تھی جہاں وہ اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آتی تھی۔
And over against the well she found in the little panoramic there a man sitting there, a Jew, and she was a Samaritan. It's a city of Sychar.
لیکن اس عورت نے کنویں کے دوسری طرف ایک چھوٹے سے منظر میں ایک یہودی شخص کو بیٹھے ہوئے پایا، جبکہ وہ سوخار شہر کی ایک سامری عورت تھی۔
And we find out that this man, this Jew, spoke an unusual word to this woman, said, bring me a drink.
اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اس یہودی شخص نے اس عورت سے ایک غیر معمولی بات کی، کہا مجھے پانی پلا۔
She said, now we have segregation. It's not right here to ask me a question like that, you being a Jew and me a Samaritan.
اب اس عورت نے کہا ہم تو علیحدہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ درست بات نہیں کہ آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کریں کیونکہ میں ایک سامری ہوں اور آپ ایک یہودی ہیں۔
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. And I'd give you waters that you don't have to come to this cistern to drink it. Be a well of water, sputtering up the...
اس نے کہا لیکن اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے بات کر رہا ہے اور تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا کہ تجھے دوبارہ اس کنویں پر پانی بھرنے نہ آنا پڑتا، ایسا کنواں دیتا کہ تجھ میں چشمہ جاری ہو جاتا۔
When she found that this proved to be the truth. Now first any man could have said that. But She said, "You say worship in the Jerusalem, and we worship this mountain."
गौर करें, जब उस औरत ने उसे पा लिया, तो फिर साबित हो गया कि यही सच्चाई है। अब इससे पहले के किसी आदमी ने ऐसा कहा होता, लेकिन उस औरत ने कहा कि तुम कहते हो कि यरूशलम में प्रस्तिश करो, जबकि हम इस पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं।
He said, "Salvation is of the Jews. We know what we believe." But said, "Let me tell you one thing." Words like this.
उसने कहा, निजात यहूदियों में से है, हम जानते हैं कि हम क्या ईमान रखते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ जो कि इस तरह है।
Neither in this mountain or at Jerusalem, for times coming when the man shall worship God in spirit and in truth, for the Father seeketh such.
तुम न इस पहाड़ पर और न ही यरूशलम में प्रस्तिश करोगे, बल्कि वो वक्त आता है जब सच्चे प्रस्तार रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है।
He said, "Go get your husband and come here. Watch, here it proved it. Here show what fountain she was at."
उसने कहा, जा पहले अपने शोहर को यहाँ बुला ला। गौर करें, यहाँ साबित हो गया, यहाँ जाहिर हो गया कि वो कौन से चश्मे पर खड़ी थी।
He said, "Go get your husband, come here." She said, "I don't have any husband." He said, "You said the truth."
कहा, जा पहले अपने शोहर को बुला ला। उस औरत ने कहा, मैं बेशोहर हूँ। उसने कहा, तूने सच कहा।
She looked like it was a plain contradiction to what he had asked her and said, "Go get your husband."
गौर करें, ये एक साफ इनकार था जो उसने उससे पूछा था। उससे कहा था, जा पहले अपने शोहर को बुला ला।
Said, "I have no husband." Said, "You've said the truth." Said, "Because you've had five and the one you're living with now is not yours."
उसने कहा, मैं बेशोहर हूँ। उसने कहा, तूने सच कहा। उसने कहा, क्योंकि तू पांच शोहर पहले कर चुकी है और अब जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं।
What's that woman? How different from the priest of that day?
उस औरत ने गौर किया कि ये शख्स इस जमाने के कहनों से कितना मुख्तलिफ है।
The priest of that day seen that same thing happen and said, "That's a devil, telepathy or a Beelzebub." See, they failed to see the word promising that.
मगर इस जमाने के कहनों ने बिल्कुल ऐसे ही काम होते देखे थे, लेकिन उन्होंने कहा, ये शख्स शैतान है, ये एक टेलीपैथी करने वाला या बालजबूल है। देखें, वो लोग उस जमाने के माउदा कलाम को देखने में नाकाम हो गए थे। लेकिन वो खातून अपने वक्त के पादरियों से ज्यादा कलाम की वाकफियत रखती थी।
She said, "Sir, I perceive that you're a prophet. We haven't had one for 400 years. That's a Malachi."
उस औरत ने कहा, जनाब मुझे मालूम होता है कि आप एक नबी हैं, इसलिए कि मलाकी नबी से अब 400 साल होने को हैं और हमारे पास कोई नबी नहीं आया।
But said, "We have looked for one and we know there's one coming, the Messiah. And when he comes, this will be what he'll do." Jesus said, "I'm he." Hallelujah. Amen.
उस औरत ने कहा, हम एक पर निगाह लगाए हुए हैं और हम जानते हैं कि मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा तो जो काम वो करेगा वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। यीशु ने कहा, मैं वही हूँ, आमीन।
Did you notice? She left her bucket at Jacob's cistern, run down into the city full of an artesian well. She'd seen it perfectly vindicated, and he was that fountain. Let me introduce to you.
क्या आपने इस बात पर गौर किया कि वो अपना गड़ा याकूब के कुएं पर ही छोड़ गई और शहर की तरफ दौड़ गई, एक जुम्बश करने वाला लबरेज कुआं। वो उसे मुकम्मल तौर पर साबित होते हुए देख चुकी थी कि यही जिंदगी का चश्मा है। मुझे उस औरत को आपसे मुतारिफ करवाने दें।
She left that when it was proved to be the word of life. She left it and had discovered that the same rock that was smitten in the wilderness was proven to be present then.
जब उसने जिंदगी के कलाम को साबित कर दिया, तो उस औरत ने अपना गड़ा वहीं छोड़ दिया। उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके सामने साबित किया गया था, और उसने बिल्कुल वही चट्टान दरियाफ्त कर ली जिसको बियाबान में मारने से पानी निकला था।
Let me say that same God that was in the days gone by that we speak so much of, he's present here now.
मुझे कहने दीजिए, बिल्कुल वही खुदा जो गुजरे दिनों में था, जिसके मुतल्लिक हमने बे इंतहा गुफ्तगू की है, वो अब भी यहाँ मौजूद है।
Not by some theological understanding, but by a personal knowledge of his vindication that he had poured out in this last days the Holy Spirit upon his church.
ना के किसी माहिरे علم الہیات کی سمجھ کے مطابق بلکہ ذاتی معرفت کی بنا پر جسے اس نے ان آخری دنوں میں روح القدس کو کلیسیا پر نازل کر کے ثابت کیا.
He is not a I was. He is still the I am. Present tense, always.
وہ ایسا نہیں کہ میں تھا بلکہ وہ اب بھی ہے, میں ہوں, زمانہ حال یعنی جو ہمیشہ رہتا ہے.
Then the cistern lost its taste. And so does every man who ever falls into the power of God by the baptism of the Holy Ghost, the denominational systems lose their taste.
تو حوض اپنا ذائقہ کھو چکا ہے, اس لیے ہر انسان جو خدا کی قدرت میں روح القدس کے بپتسمے کے وسیلہ سے داخل ہو گیا ہے تو اس نے سارے تنظیمی نظام اور ان کے ذائقے کو ختم کر دیا ہے.
You don't want more of that stagnated frogs and lizards and bugs and so forth. You're drinking from a fountain that's fresh and pure. The word of God fresh every hour in your soul.
اس لیے آپ مزید اس بے حس و حرکت والے حوض کو نہیں چاہیں گے جس میں مینڈک اور چپکلیاں اور اسی طرح کے کیڑے مکوڑے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے کہ آپ ایک خالص اور صاف و شفاف چشمہ جو ہر گھڑی آپ کی جان میں تازگی لاتا ہے یعنی خدا کے کلام سے پی رہے ہیں.
The same is now when the word has been proven to be the truth. Taste and see if it's not right.
جو اب بھی یکساں ہے, پیئیں اور دیکھیں کہ کیا اس کا ذائقہ درست نہیں, جبکہ کلام حقیقت میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ اسے ہی سچا ہونا ہے.
Though the cistern had served us well, served his time well, but you see, the fountain of life is there, not Jacob's well no more for spiritual drinking.
اگرچہ حوض نے ٹھیک خدمت گزاری کی اور اچھی طرح سے اپنے وقت میں خدمت کی, لیکن آپ دیکھیں اب یعقوب کا کنواں مسجد نہیں چلے گا, اس لیے کہ روحانی پانی پینے کے لیے وہاں زندگی کا چشمہ موجود تھا.
What they thought they drank from that well, well, it would be all right. But now the fountain of life itself was sitting there.
انہوں نے کیا سوچا؟ یہی کہ اگر انہوں نے یعقوب کے کنویں سے پانی پیا ہے تو پھر سب ٹھیک ہے, لیکن اب وہاں زندگی کا چشمہ خود ہی بیٹھا ہوا تھا.
Now we don't need systems and organizations that we have. We're at the end time.
اب جو نظام اور تنظیمیں ہمارے پاس تھیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم آخری وقت میں ہیں.
And God promised in this end time the things that he would do and we sit fulfilled to the word.
اور خدا نے اس آخری وقت میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسے کام کرے گا اور ہم خدا کے کلام کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
We hear the man of military might stand up and shivering and saying that something's fixed to happen. We feel the Holy Spirit warning us that something's fixed to happen.
ہم بہادر فوج کے نوجوان کو کھڑے اور جنبش کرتے یہ کہتے سنتے ہیں, کوئی بات ہوا کیا ہوگی؟ ہم محسوس کرتے ہیں کہ روح القدس ہمیں خبردار کر رہا ہے کوئی بات واقع ہونے کو ہے.
We see everything set in order. Then leave that system and come to the fountain. Yes, sir, served his purpose. But now she was face to face with the fountain itself.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز نظم و ضبط میں قائم ہے, تو پھر اس نظام کو چھوڑیں اور اس چشمے کے پاس آ جائیں. جی ہاں جناب, اپنے مقصد کی تعمیل کے لیے اب وہ عورت خود روبرو اس چشمے کے سامنے کھڑی تھی.
John 7:37-38, Jesus said in the last days of the feast of the tabernacle, what did he say? If any man thirst, let him come to me and drink. Right in a bunch of theologians.
یوحنا کی انجیل 7:37-38 میں یسو نے عید کے آخری دن جو کہ عید خیام کہلاتی ہے کھڑے ہو کر کہا, اس نے کیا کہا تھا؟ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیئے. دیکھیں وہ ٹھیک علم الہیات کے ہجوم میں کھڑا ہو کر مخاطب ہوا.
If any man thirst, let him come to me and drink. For the scriptures have said, out of his innermost being shall flow rivers of living water.
اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیئے, جیسا کہ کلام میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی.
There's the living fountain. That's the fountain that the people forsaken today. For the creed they have forsaken the fountain of living water.
یہاں زندگی کا چشمہ ہے. یہی وہ چشمہ ہے جس کو لوگ آج ترک کر چکے ہیں اپنے عقیدے اور رسم و رواج کے لیے. وہ آب حیات کے چشمے کو فراموش کر چکے ہیں.
Let me introduce you to him. He to me, and I'm closing. He to me is that fountain that saved Hagar's life and the child when they were dying in the wilderness.
مجھے اس کو آپ سے متعارف کروانا ہے. اس نے مجھے, اب میں پیغام ختم کر رہا ہوں, وہ میرے لیے وہی چشمہ ہے جس نے حاجرہ اور اس کے بچے کی زندگی بچائی جب وہ بیابان میں مر رہے تھے.
I believe he is that rock. In Isaiah 32, he's that rock in a weary land. He's the shelter in a time of storm.
मेरा ईमान है ये वही चट्टान है जो यशायाह 32 में है. ये वही चट्टान है जो उस मांदा जमीन में थी. वही तूफान की घड़ी में पनागा है.
Zechariah 13, he is the fountain that's opened in the house of David for sin. I believe him to be that, don't you?
यही वो चश्मा है जो ज़िक्रिया 13 में दाऊद और उसके घराने के लिए गुनाह और नपाकी दोनों को फूट निकला. मेरा ईमान है इसे वही होना है. क्या आप इस बात पर ईमान नहीं रखते?
In Psalms 36:9, he is David's fountain of life. He is the still waters of David and the green pastures. He is the water by the brookside before David.
जबूर 36:9 में वो दाऊद का आबे हयात है. वो अब भी दाऊद के लिए राहत का चश्मा और हरी हरी चरागाह है. वो दाऊद के लिए अब भी चश्मे का पानी है.
In Genesis 17, he's Abraham's nursing breast. El Shaddai.
पदेश 17 में वही एल शडाई इब्राहिम को पालने पलाने वाला था.
So when his life is gone from him, still he, God said, a man of 100 years old, how will this thing be? I'm old. My wife is old. How can these things be? He said, I am El Shaddai.
हालांकि इब्राहिम की जवानी की जिंदगी उसे जा चुकी थी, तब भी उसे खुदा ने कहा था, अंदाजा करें एक शख्स जो 100 वर्ष का हो उससे औलाद कैसे पैदा होगी. उसने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बूढ़ी है, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? खुदा ने कहा, मैं एल शडाई हूँ.
Now, El is thee, and Shaddai is breast, and Shaddai is plural, which means I am the breasted God.
अब एल यानी वही खास हूँ और शडाई यानी पालने वाला हूँ. और शडाई लव सिगय जमा है जिसका मतलब है मैं ही संभालने वाला और पालने वाला खुदा हूँ.
Like a baby that's fretting and is sick and strength is gone from it, lean upon the mother's bosom and nurse its strength back.
बिल्कुल जैसे एक बच्चा जब वो बीमार होता है तो वो दिक करता है और उस बीमारी की वजह से वो कुवत खो बैठता है, लेकिन जब उसे माँ की गोद में लटाया जाता है तो वो उसे दूध पिलाती है, तब उसकी कुवत लौट आती है.
Sure, not only when it's nursing, it's sitting fretting no more at the mother's breast, it's satisfied why it is getting its strength.
यकीनन न के सिर्फ कुवत लौटती है बल्कि जब उसे दूध पिलाया जा रहा होता है तो फिर वो मजीद परेशान भी नहीं करता, क्योंकि माँ की छाती ही से दूध पीते हुए वो अपनी कुवत को पाता और मुतमिन हो जाता है.
Any man that will take God's promise in his heart, that the promises to you and your children, them as far off as many as the Lord our God shall call, and lay right against that and nurse your strength back, fretting child, believe it. It's for the believers.
और कोई भी इंसान जो खुदा के वादे को अपने दिल में रखेगा, जैसा कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से है जिनको खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा, उस नातवानी के बरक्स वादे को अपने दिल में रखें और ये आपकी तैमारदारी करेगा और आपकी कुवत वापस लौट आएगी. ऐ घबराए हुए बच्चों, वादे पर ईमान रखो क्योंकि ये ईमानदारों के लिए है.
To the believer, poet, I can think of many songs that the poet found. There was one of them said one time,
मैं अंदाजा कर सकता हूँ बहुत से गीत शायरों ने हमारे लिए लिखे हैं. एक ईमानदार शायर जो उनमें से एक था, एक मर्तबा उसने कहा,
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stain.
एक चश्मा जो के लहू से भरा है, जो इमैनुअल की नसों से निकला है. जब गुनाहगार उस लहू में डूब जाते हैं तो उनके गुनाहों के दब्बे मिट जाते हैं.
That dying thief rejoiced to see that fountain in his day. There may I, though vile, see wash all my sins away.
जब वो डाकू मर रहा था तो उसने अपने दिन में उस चश्मा को देखा जिसने उसे शादमानी बख्शी, जहां मुझे होना था पर वो हकीर बना और मेरे सब गुनाहों को धोकर दूर कर गया.
Ever since by faith I saw that stream thy flowing wounds supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
और फिर मैंने ईमान से उसके गांव से उस चश्मा को बरते हुए देखा. कफारे की मोहब्बत ही मेरा मौजू रहेगा, जब तक मैं मर न जाऊं तब तक रहेगा.
To me he's the waters of the word of separation that separates you from everything that's contrary to his word. That's the fountain I believe him to be. Yes, sir.
वो जुदा करने वाले कलाम का ऐसा पानी है जो मुझको और आपको हर उस चीज से जुदा करता है जो उसके कलाम के मुतजाद है। यही वो चश्मा है और मेरा ईमान है कि इसे ऐसा ही होना है। जी हाँ जनाब।
That it's the waters that separated me from man-made cisterns to the fountain of living water.
यही वो आबे हयात का चश्मा है जिसके पानी ने मुझे इंसान के बनाए गए हौज से जुदा कर दिया है।
Oh friend, you can just go on and on with the things that he is to us.
हो दोस्तों, मैं और आप इस चश्मे की उन चीजों के साथ ऊपर ही ऊपर जा सकते हैं जो के उसने हमारे लिए रखी हैं।
He's Alpha Omega. He's the beginning, he's the end, he's he that was, which is, and shall come, he's the root and offspring of David, he's the morning star, he's my all in all.
वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तदा और इंतहा है, वो है जो था, जो है और जो आने वाला है, वो ही दाऊद की असल और नस्ल है, वो ही सुबह का सितारा है, वो मेरे लिए सब कुछ में सब कुछ है।
And brother, sister, if you haven't had a just been drinking from this little man-made tank all your life, why not this morning forsake that tank and come to this fountain?
भाई और बहनों, अगर आपके पास एक ऐसा चश्मा नहीं था और आप अपनी पूरी जिंदगी ही उस हकीर से इंसान के बनाए गए हाउस से पीते रहे हैं, तो फिर आज सुबह आप उस हाउस को तरक करके इस चश्मे के पास क्यों नहीं आ जाते?
Let's bow our heads just a moment.
आए एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाते हैं।
With your heads bowed. To my opinion, the altar call. How many now?
अपने झुके हुए सरों के साथ मेरा ख्याल है कि मज़बा पर बुलाया जाए। अब कितने तैयार हैं?
I was all nervous. I keep me too long. Made me chop my message to pieces. But I believe the Holy Spirit wants you to get what I mean.
मैंने आपको काफी देर से बिठाए रखा है और मैं इस बात से काफी परेशान था। शायद आप लोग मुझे और मेरे पैगाम के इस हिस्से को छोड़ ना दें, लेकिन मुझे यकीन है रूहुल कुछ चाहता है कि आप वो कुछ हासिल करें जो मेरे कहने का मतलब है।
Look, there's nothing more important in this day than getting right with God. See, our dinners, whatever it is, whatever the Lord is here. Now, I've only heard that about once in my life since this time.
गौर करें कि अब इस दिन में इस बात से बढ़कर कोई अहम चीज नहीं है कि हम खुदा से दुरुस्त चीज को हासिल कर रहे हैं। देखें, ना ही हमारा रात का खाना या ये जो कुछ भी हो, कुछ भी अहम नहीं है, इसलिए कि खुदावंद यहाँ मौजूद है। अब मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा इसके मुतालिक सुना था और उस लम्हा से इस वक्त तक सुन रहा हूँ।
Now, all of you here, not how many, all of you here that wants to drink from that, just stand up just a minute, just for prayer. God bless you. Lord bless you.
अब क्या आप सब यहाँ मौजूद नहीं हैं? तो फिर कितने तैयार हैं? आप सब जो यहाँ मौजूद हैं और चाहते हैं कि उस चश्मे से पिएं, तो फिर दुआ में एक लम्हा के लिए खड़े हो जाएं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे।
Now, how many in here that standing present now would say that by uplifted hand like this, God, move on me, just fill me, let me drink from this fountain?
अब इस इमारत में कितने हैं जो अब खड़े हुए हैं, अपने हाथों को इस तरह बुलंद करें, कहना पसंद करेंगे, ऐ खुदा मुझ पर जुम्बश कर और मुझे उस चश्मा से पीने दे और मुझे लबरेज कर दे।
And I haven't done just what's right, but I want you to forgive me for it. I want you to wash away my sins and let me from this day just like,
क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया था जो कि दुरुस्त था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मुझे इसके लिए माफ कर दे, और अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे धोकर मेरे गुनाहों को दूर कर दे और मुझे इस घड़ी ही से अपने हाथों में ले ले, बस बस मुझ पर निगाह कर।
From Emmanuel, and sin.
एक चश्मा जो लहू से भरा है, जो इमैनुएल की नसों से निकला है। जब गुनाहगार उस लहू में डूब जाते हैं तो उनके गुनाहों के धब्बे मिट जाते हैं, तो उनके गुनाहों के धब्बे मिट जाते हैं, तो उनके गुनाहों के धब्बे मिट जाते हैं। जब गुनाहगार उस लहू में डूब जाते हैं तो उनके गुनाहों के धब्बे मिट जाते हैं।
Now that you, that's a Christian believer, you've accepted Christ as your personal Savior. But you have not as yet. Now if you haven't, that's the fountain. The only one I know about is that fountain from Emmanuel's veins.
अब अगर आप एक मसीही ईमानदार हैं और आपने मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा तो कबूल कर लिया है, लेकिन अभी तक वैसे नहीं हासिल किया। अब अगर आपने उस चश्मे को हासिल नहीं किया तो सिर्फ एक ही वो चश्मा है जिसके मुतल्लिक मैं जानता हूँ, और वो इमैनुएल की नसों से बहता है।
Now, and if many of you here, it's just like I was speaking the other night about this little eagle walking in the barnyard with the chickens. And he never knew nothing else but the chickens, but he knew there's something about him was different from the chickens.
अब आप में ज्यादातर लोग मौजूद हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो कि मैं किसी रात एक नन्हे उकाब के मुतालिक बता रहा था, जो बाड़े के सहन में चूजों के साथ चहलकदमी कर रहा था, और वो चूजों के सिवा कभी भी किसी भी चीज के मुतालिक नहीं जानता था, लेकिन वो अपने बारे में ये जानता था कि चूजों की निस्बत उसमें कोई मुख्तलिफ बात है।
And then his mother come hunting him, and she screamed from above. It was an eagle's call.
जब उसकी माँ चूजा जानकर उसका शिकार करने आई, तो वो ऊपर फिजा में ही चला उठी, और ये एक अकाब की पुकार थी।
He had to be an eagle to begin with, or he'd never recognize that call.
देखें, उस नन्हे परिंदे को आगाज ही से एक अकाब होना था, वरना वो कभी भी उस आवाज को नहीं पहचान सकता था।
It has to be something there germatized, or can never produce life.
देखें, वो पहचान गया, इसलिए कि किसी भी चीज के वजूद में आने के लिए जरसूमे का होना जरूर है, वरना कभी भी जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती।
And if the seed, the word of God is in you, the Holy Spirit, you're now to germatize that and bring it to a reality to you.
और अब अगर बीज यानी खुदा का कलाम आप में है, तो रूहुल कुछ यहाँ मौजूद है जो अभी इसकी इब्तदा करे और इसे हकीकत में आपके लिए खींच लाए।
How many in your has not received the baptism of the Holy Ghost? Would you raise up your hands all around everywhere, just real honest, if you haven't received the Holy Ghost and you'd like to raise up your hand wherever you are, just keep your hand up just a moment.
कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रूहुल कुछ का बपतिस्मा हासिल नहीं किया? अपने हाथों को बुलंद करें। हकीकी दयानदारी से इर्द गिर्द और हर जगह से वो लोग जिन्होंने रूहुल कुछ का बपतिस्मा हासिल नहीं किया, लेकिन आप चाहते हैं कि हासिल करें, तो अपना हाथ बुलंद कीजिए और आप जिस जगह पर भी हैं खड़े हो जाएं, सिर्फ एक लम्हा के लिए अपना हाथ बुलंद करें।
Now, I want you standing around and looking at them. I want somebody to lay your hands over on them. I believe right now the Holy Spirit will fill every one of you.
अब मैं चाहता हूँ आप लोग जो उनके चौगिर्द खड़े हैं उन्हें देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई शख्स उन पर अपने हाथ रखे। मेरा ईमान है कि रूहुल कुस उनको अभी भर देगा जो ये चाहते हैं।
Now, don't think about the food out there in the cafeteria. Let's think about this food here. This is one. This is life. See, this is life.
इसलिए आप बाहर किसी रेस्तरां के खाने के मुतालिक मत सोचें, आए सिर्फ इसी खुराक के मुतालिक ख्याल करें जो यहाँ मौजूद है। सिर्फ यही एक है जो जिंदगी है। देखें, ये जिंदगी है।
Now, turn right around each one of you and lay hands on each other. And they laid their hands upon.
अब आप में से हर एक ठीक अपने गिर्द घूमे और अपने हाथ अपने सामने वाले दूसरे शख्स पर रखे। अब उन्होंने अपने हाथ उन लोगों पर रख दिए हैं।
Now I want you to pray for that person. You got your hand. Now don't think about going out. Don't think about nothing else. Just think right now the Holy Spirit's here to fill each individual.
अब मैं चाहता हूँ कि आप उस शख्स के लिए दुआ करें जिस पर आपने हाथ रखा हुआ है। आप बाहर जाने के मुतालिक ख्याल ना कीजिए और ना ही इसके अलावा किसी चीज के मुतालिक सोचें। सिर्फ यही ख्याल कीजिए कि ठीक इसी घड़ी रूहुल कुस आप में से हर एक को इनफरादी तौर पर भर देगा।
Open up your heart. Dump all the cistern water out and say, O fountain of life, come into me. Fill me, O Lord God, with thy goodness and mercy.
अपने मन का दरवाजा खोलें और उस हाउस के आलूदा पानी को बाहर निकाल दें और कहें, ऐ जिंदगी के चश्मे मेरे अंदर आ जा, اے خداوند خدا، مجھے اپنی رحمت اور بلائی سے بھر دے.
Lord Jesus, that inexhaustible fountain, I pray God that you will fill each one of them. May the Holy Ghost fall here.
خداوند یسوع، تو ہی ایسا چشمہ ہے جو کبھی خالی یا کم نہیں ہوتا. اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہر ایک کو بھر دے. خدا کرے روح القدس یہاں اتر آئے.
I pray God that we'd forget all about anything else, that the Holy Spirit fall into the midst of us just now and will give to us that waters of life freely from everywhere.
اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ جب روح القدس ہمارے درمیان نازل ہو تو ہم کسی بھی چیز کے متعلق سب کچھ بھول جائیں، اور وہ ابھی ہمیں ہر طرف سے زندگی کا پانی مفت بخشے.
Granted, oh God, while the continuity of prayer and song blending together, Lord, knowing it's your presence, your divine presence, we want to come to the fountain. We want the real genuine baptism with the Holy Ghost.
اے خدا، یہ دعا منظور کر، جبکہ اے خداوند ہم متواتر گیت گاتے اور دعا کرتے اور یک جان ہو کر یہ جانتے ہوئے تیری حضوری میں، تیری الہی حضوری میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس چشمے کے پاس آ جائیں، کیونکہ ہم حقیقی روح القدس کا اصل بپتسمہ چاہتے ہیں.
Lord, these people are praying for it. I pray that this right moment now that they will be filled with this goodness of God. Grant it, O God. Hear the prayer of your children.
اے خداوند، یہ سب لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ٹھیک اسی لمحے یہ لوگ خدا کی بلائی کے ساتھ بڑھ جائیں. اے خدا، یہ بخش دے اور اپنے بچوں کی دعاؤں کو سن لے.
May you come upon their being. May the power of God and the Holy Ghost sweep over them. Grant it, God.
اور خدا کی قدرت یعنی روح القدس کے وسیلہ سے ان لوگوں پر عیاں کر دے اور ان لوگوں کو سنبھال لے. اے خدا، یہ دعا قبول کر.
Oh, how we thank you for the refreshing, for the presence of the mighty God of heaven standing in our midst.
اے قادر مطلق آسمان کے خدا، ہم کیسے تیری حضوری کی تازگی کا جو ہمارے درمیان موجود ہے شکریہ ادا کریں.
Right at this noon hour, Lord, feed us. Lord, we want food from your table. Feed us, Lord, just now. Feed us with the Holy Spirit in our lives.
خداوند، ٹھیک اس دوپہر کی گھڑی میں ہمیں بھرپور کر دے، اس لیے کہ خداوند ہم تیرے دسترخوان سے خوراک چاہتے ہیں. اے خداوند، ہمیں ابھی سیر و آسودہ کر دے، ہماری زندگیوں میں ہی ہمیں ابھی روح القدس سے بھر دے.
Our hungry, parching souls are thirsty. As you said in the interpretation of the song, it would pour forth water upon parched ground.
کیونکہ ہماری بھوکھی جلی ہوئی جانیں پیاسی ہیں، جیسے تو نے گیت کی ترجمانی میں کہا کہ تو خشک زمین پر پانی انڈیلے گا.
Let it happen, Lord. Let thy words be made manifested in the hearts of thy children. Waters upon dry, parched ground.
خداوند، اب ایسا ہونے دے، اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہونے دے، اور اس پانی کو خشک اور جلی ہوئی زمین پر انڈیل دے.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing.
اے عبدی خدا، اپنے خادموں کی دعاؤں کو سن اور ہمیں یہ برکات عطا فرما. آمین.
Oh,
کیسے میں یسوع سے پیار کروں.
Just keep praising now. Find out the Holy Spirit here. If you don't receive it, it's your fault.
ابھی اس کی حمد و ثنا جاری رکھیں. روح القدس موجود ہے، اسے پالیں. اگر آپ نے اسے حاصل نہیں کیا تو پھر آپ کوتاہی کر رہے ہیں.
How I love Jesus.
کیسے میں یسوع سے پیار کروں.
Lovest thou me
more? کیسے اس نے مجھے ان سب سے بڑھ کر پیار کیا. یسوع سے پیار کرو کیونکہ پہلے اس نے مجھ سے پیار کیا.
Oh,
کیسے میں پیار کروں. خدا کی تعریف ہو.
Oh,
کیسے میں پیار کروں.
کیا
ہو اگر وہ ابھی آ جائے. कैसे मैं यीशु से प्यार करूं, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया।
Never forsake. Never forsake. Never forsake.
मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। अजीब अजीब, यीशु मेरी जानिब है। वो मसीह सलामती का शहजादा, वो खुदाए कादर है। ओ, उसी ने मुझे तमाम गुनाहों और शर्मिंदगी से महफूज कर रखा है। उसकी तारीफ हो, मेरा मखलसी देने वाला अजीब है। आइए अब ये गीत उसी के लिए गाते हैं।
wonderful, wonderful,
अजीब अजीब, यीशु मेरी जानिब है। वो मशीर सलामती का शहजादा, वो खुदाए कादर है। ओ, उसी ने मुझे तमाम गुनाहों और शर्मिंदगी से महफूज रखा है। उसकी तारीफ हो, मेरा मखलसी देने वाला अजीब है।
All of you, let's say amen. Oh, hallelujah. I see some people coming through now with the Holy Spirit.
कि आप तमाम लोग ऐसा महसूस करते हैं तो फिर कहें आमीन। हो हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी ही रूल कुछ से भरकर उसकी ताबेदारी कर रहे हैं।
I once was lost.
मैं खोया हुआ था, अब मेरी बुनियाद उस हुक्म में सजा से आजाद करके रखी है।
Jesus gives liberty.
यीशु ने आजाद किया है और पूरी निजात बख्शी है। उसी ने मुझे तमाम गुनाहों और शर्मिंदगी से महफूज कर रखा है। उसकी तारीफ मेरा मखलसी देने वाला अजीब है। आइए अब अपने हाथ बुलंद करें और हकीकी तौर पर ओ अजीब अजीब, यीशु मेरी जानिब है। वो मशीर सलामती का शहजादा, वो खुदाए कादर है। ओ, उसी ने मुझे तमाम गुनाहों और शर्मिंदगी से महफूज कर रखा है। उसके नाम की तारीफ हो, मेरा मुखलसी देने वाला अजीब है। क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं? हो, वो अजीब है। उसी चश्मे की तारीफ हो जो लहू से भरा है, जहाँ तमाम गुनहगार इंसान के खौफ और तमाम हुक्म सजा से मुफ्त मखलसी पाते हैं। हालेलुया। हो मेरे अजीजो, वो वाक्य ही शानदार है।
Now, while we sing that again, let's let all the Methodists, Baptists, Catholic, Presbyterian, whatever it is, while we're singing this wonderful Jesus is to me, let's just turn around and shake hands with each other. Just have a good old mix-up.
अब जब हम इस गीत को दोबारा गाते हैं, तो आइए सब, चाहे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन या आप जो कोई भी हैं, इसी दौरान जब हम ये गीत गाते हैं, अजीब यीशु मेरी जानिब है, आइए अपने इर्द गिर्द घूमते हैं और हर एक दूसरे शख्स के साथ हाथ मिलाते हैं, जैसे कि बड़ा अच्छा पुराना मेलजोल हो।
You know, that's what I like. Come on, let's sing it now as we do it.
आप जानते हैं, यही वो बात है जिसे मैं पसंद करता हूँ। आइए फिर, जब तक हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इसी गीत को गाते हैं। ओ अजीब अजीब, यीशु मेरी जानिब है। यीशु अजीब है, क्या ये सच है? हो, वो मशीर सलामती का शहजादा है।
Keeping me
from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Bible said, pray for those that are in authority.
बाइबल कहती है अपने हाकमों के लिए दुआ करो.
Our heavenly Father, we are standing in a desperate need for the leader of our nation, our president. He may never know this, Lord, but you know it.
हमारे आसमानी बाप, हम इस बात के लिए बेखौफ खड़े होते हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क के सदर और हमारी कौम के रहनुमा की जरूरत है. हो सकता है कि सदर इस बात को कभी ना जाने, मगर खुदावन तू तो इस बात को जानता है.
I pray for Brother Johnson as he professes to be a believer in you. Father, a heart attack, we understand, has struck him.
इसलिए मैं भाई जॉनसन के लिए दुआ करता हूँ. हो सकता है कि वो इकरार करके तुझ में एक ईमानदार बन जाए. और ए बाप, हम समझते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ा है जिसने उसे मरने की हद तक पहुँचा दिया है.
I pray God spare his life. We're in a national crisis right now anyway. Let thy spirit come upon him, Lord.
लेकिन ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि तू उसकी जिंदगी को बचा ले, इसलिए कि हम मुल्क की सतह पर अब ठीक नाजुक हालत में हैं. इसलिए खुदावन, तेरी रूह अब उस पर साया करे.
And right now, in the hospital, wherever he may be, let your spirit come down to that Walter Reed Hospital and touch his body.
चाहे वो अस्पताल या कहीं भी हो, ठीक इसी घड़ी तेरी रूह वॉल्टर रेड अस्पताल में उतर आए और उसके बदन को छुए और उसकी जिंदगी को बचा ले.
Lord, the man's under pressure. More pressure than what we understand.
खुदावंद, हम समझते हैं कि जब बोझ मजीद बढ़ जाए तो क्या होता है, क्योंकि ये शख्स भी बोझ तले दब गया है.
So we pray God, as believers and as a part of this nation, we pray for our leader that you will grant him an extension of life in this great hour. In the name of Jesus Christ, amen.
इसलिए ऐ खुदा, ईमानदार और इस कौम का एक हिस्सा होते हुए हम अपने रहनुमा के लिए दुआ करते हैं कि तू इस अजीम घड़ी में उसकी उम्र को दराज कर. यीशु मसीह के नाम में, आमीन.